आगे सबक देखिए भाई। बाबुल बुगात वइदा तगल्लब कौमु मिनल मुस्लिमीन अला बलदिन वखरजू मिन ताअतिल इमाम दआहुम इलल औदि इलल जमाअह वकशफ अन शुबहतिहिम لأن عليا رضي الله تعالى عنه فعل كذلك بأهل حرورا قبل قتالهم ولأنه أهون الأمرين। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर साहिब हिदाया मुर्तदों के अहकाम बयान फरमा रहे थे। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर कोई मुकातब मुर्तद हो जाए और दारुल हर्ब चला गया और काजी ने उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया और फिर वहां उस मुकातब मुर्तद ने माल कमाया और फिर उस इलाके पर मुसलमानों ने गलबा हासिल कर लिया, उस इलाके को फतह कर लिया और उस मुर्तद ने मुसलमान होने से इनकार कर दिया तो उसे तो कत्ल कर दिया जाएगा। अलबत्ता उस मुर्तद का माल माले फै नहीं है बल्कि इसी माल के जरिए उसका बदले किताबत उसके आका को अदा किया जाएगा और जो माल बाकी बचेगा वो उस मुकातब के वारिसों के लिए होगा। साहिबैन के जाब्ते के मुताबिक तो ये बात जाहिर है, उन पर कोई एतराज नहीं होता क्योंकि साहिबैन के नजदीक इर्तेदाद की वजह से मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर से खत्म नहीं होती। लेकिन इमाम साहब पर इश्काल होता है कि उनके नजदीक तो मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर से खत्म हो जाती है। तो मालूम हुआ इमाम साहब ने वो आजाद आदमी जो मुर्तद हो गया है और वो मुकातब जो मुर्तद है दोनों में फर्क किया है। तो साहिब हिदाया ने इमाम साहब की दलील जिक्र फरमाई थी कि जो मुकातब है ये अकदे किताबत की वजह से अपनी कमाइयों का मालिक बनता है और इर्तेदाद की वजह से जब अकदे किताबत मौकूफ नहीं हुआ तो इस मुकातब मुर्तद की कमाई भी मौकूफ नहीं होगी, ये अभी भी उसका मालिक है भाई। लिहाजा इसी से बदले किताबत अदा किया जाएगा और बाकी बचने वाला माल इसके वारिसों का हक है भाई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अलायाज़ु बिल्ला एक मर्द और औरत जो है वो मुर्तद हो गए और वो दारुल हर्ब चले गए और वहां पर उस औरत ने औलाद को जन्म दिया और फिर आगे उनकी औलाद से औलाद हुई और फिर वहां पर मुसलमानों ने गलबा पा लिया तो इन सबको पकड़ लिया गया। तो वो मुर्तद और उसकी बीवी का हुक्म तो आप पढ़ चुके हैं कि मुर्तद को कत्ल किया जाएगा अगर वो इस्लाम नहीं लाता और औरत को कत्ल नहीं किया जाता। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि औलाद जो है वो मां के ताबे होती है आजादी और गुलामी में, लिहाजा मुर्तद की मुर्तदा बीवी को बांदी बनाना जायज है तो उसकी औलाद और औलाद की औलाद भी वो भी माले गनीमत होंगे, उनको भी गुलाम बनाया जाएगा। और फिर क्या इनकी औलाद और औलाद की औलाद को इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा या नहीं? तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि औलाद जो है वो तो वालिदैन के ताबे है, लिहाजा जैसे इनके वालिदैन को इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा तो इनकी जो पहली औलाद है उनको भी इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा। अलबत्ता फर्क यह है कि मुर्तद अगर इस्लाम नहीं लाता उसको तो कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन उसकी औलाद अगर इस्लाम नहीं लाती तो उनको कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि हकीकत में वो मुर्तद नहीं हुए, उनके वालिदैन मुर्तद हुए थे। तो बहरहाल उनको इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा। और बाकी औलाद की जो औलाद है तो क्या उनको भी इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा या नहीं? तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक है जाहिर रिवायत, जाहिर रिवायत के मुताबिक ये औलाद की जो औलाद है ये काफिर असली शुमार होंगे, ये मुर्तद शुमार नहीं होंगे। पहली औलाद तो मुर्तद शुमार होती थी अपने वालिदैन के ताबे होकर, लेकिन दूसरी औलाद वो वालिदैन के ताबे होकर मुर्तद शुमार नहीं होंगे, वो काफिर असली शुमार होंगे, लिहाजा उनको इस्लाम पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला इमाम साहब से रिवायत नकल करते हैं कि औलाद की औलाद जो है वो भी दादा के ताबे हैं, उनको भी इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा। और साहिब हिदायत ने बताया कि इस इख्तिलाफ की असल वो जो इस्लाम के अंदर ताबे होने के अंदर इख्तिलाफ है। जाहिर रिवायत के मुताबिक अगर दादा मुसलमान हो जाए तो उसकी औलाद की जो औलाद है वो दादा के ताबे होकर मुसलमान शुमार नहीं होंगे, जबकि हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह जो इमाम साहब से रिवायत नकल करते हैं उसके मुताबिक जो औलाद की औलाद है वो दादा के ताबे होकर उनको भी मुसलमान शुमार किया जाएगा। और साहिब हिदायत ने बतलाया कि ये चार मसाइल हैं जिनके बारे में दो दो रिवायतें हैं भाई, एक जाहिर रिवायत है और एक हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह की रिवायत है। जाहिर रिवायत के मुताबिक इन चार मसलों के अंदर जो पोते पोतियां हैं वो दादा के ताबे नहीं होंगे, दादा का बाप वाला हुक्म नहीं होगा, जबकि हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक पोते पोतियां वगैरह ये दादा के ताबे होंगे और इन मसलों के अंदर दादा का भी वही हुक्म होगा जैसे बाप का है भाई। तो इन चार मसलों में से पहला मसला तो इस्लाम के अंदर ताबे होने का मसला है। जाहिर रिवायत के मुताबिक पोते पोतियां वगैरह जो हैं इस्लाम के अंदर दादा के ताबे नहीं, यानी दादा का हुक्म बाप वाला नहीं है। बाप मुसलमान हो फिर तो औलाद मुसलमान शुमार होती है, लेकिन दादा मुसलमान हो जाए तो उसके पोते पोतियां वगैरह मुसलमान शुमार नहीं होंगे, दादा का बाप वाला हुक्म नहीं है इस मसले में। जबकि हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस मसले में दादा भी बाप के हुक्म में है, लिहाजा दादा के इस्लाम की वजह से भी पोते पोतियां जो हैं वो मुसलमान शुमार होंगे। और दूसरा मसला जो है सदका फितर का है। आप जानते हैं कि मालदार आदमी पर अपना और अपनी नाबालिग औलाद का सदका फितर वाजिब होता है, लेकिन अगर नाबालिग औलाद का बाप तो फकीर है लेकिन उनका दादा मालदार है तो क्या यहां दादा बाप के हुक्म में है या नहीं, क्या दादा पर इस नाबालिग पोते पोतियों का सदका फितर आएगा या नहीं? तो जाहिर रिवायत के मुताबिक यहां दादा बाप के हुक्म में नहीं, लिहाजा दादा पर सदका फितर नहीं आएगा, जबकि हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक दादा पर सदका फितर वाजिब होगा भाई। तीसरा मसला जो था वो जर्रे वला का था। जर्र उनका माना है खींचना। मैंने आपको बतलाया था जर्रे वला इसे कहते हैं कि एक बांदी जिसको आजाद किया गया है उसका निकाह एक गुलाम से हुआ है तो इनकी औलाद आजाद शुमार होगी, क्योंकि मां आजाद है तो औलाद भी आजाद शुमार होगी अगरचे बाप गुलाम है। तो ये जो बांदी जो है इसकी वला का मुस्तहिक तो बांदी को आजाद करने वाला यानी बांदी का आका है, और इसी तरह बांदी की जो आजाद औलाद है उनकी वला का मुस्तहिक भी उस बांदी का आका है। लेकिन अगर ये गुलाम जो है ये जो बच्चों का बाप है अगर इसको इसके आका ने आजाद कर दिया तो ये गुलाम अपने बच्चों की वला मां के आका से खींचकर बाप के आका की तरफ मुंतकिल कर देगा, यानी अब बच्चों की वला उनके मां के मौतिक को नहीं मिलेगी बल्कि बाप के मौतिक को मिलेगी। तो इसको कहते हैं जर्रे वला के बाप ने बच्चों की वला मां के मौतिक से खींचकर अपने मौतिक की तरफ मुंतकिल कर दी। तो बाप तो जर्रे वला करता है लेकिन क्या अगर दादा आजाद हो जाए, बाप तो आजाद नहीं हुआ लेकिन बच्चों का दादा उसको आजाद कर दिया गया तो क्या दादा भी यहां जर्रे वला करेगा या नहीं, क्या वो इन बच्चों के वला को खींचकर अपने आका की तरफ फेरेगा या नहीं? तो जाहिर रिवायत के मुताबिक दादा का हुक्म यहां बाप वाला नहीं, लिहाजा वो दादा जर्रे वला नहीं करेगा, जबकि हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक यहां दादा भी बाप के हुक्म में है लिहाजा वो भी जर्रे वला करेगा। और चौथा मसला था रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना। एक शख्स अपने रिश्तेदारों के लिए वसीयत करके मर गया कि मेरे माल में से 20 लाख रुपए मेरे रिश्तेदारों को दे देना। तो आप जानते हैं कि जो वारिस है उसके लिए वसीयत जायज नहीं। हां अलबत्ता वो वरासा जो महरूम हो रहे हैं किसी वजह से तो वो इसके अंदर दाखिल होंगे। तवज्जो है, तो इसके वो रिश्तेदार जिनको वरासत नहीं मिल रही, मसलन इस मैयत के मां बाप और दादा वगैरह वो काफिर हैं, ये मैयत तो मुसलमान हो गई थी लेकिन बाप दादा वो काफिर हैं, तो इसने अपने रिश्तेदारों के लिए वसीयत की है। तो उलमा फरमाते हैं कि मैयत के वालिदैन तो इस वसीयत के अंदर दाखिल नहीं, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो रिश्तेदारों से भी बढ़कर ज्यादा करीब हैं इंसान के। चुनांचे उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने बाप के बारे में कहे कि ये मेरा रिश्तेदार है तो ये शख्स वालिदैन का नाफरमान है। ये शख्स क्या है? वालिदैन का नाफरमान है। माना यह है कि इसने अपने बाप की सख्त बेअदबी की है भाई, क्योंकि बाप तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर उसके करीब है भाई। तो लिहाजा एक शख्स ने अपने रिश्तेदारों के लिए वसीयत की तो उसके वालिदैन तो वसीयत के अंदर दाखिल नहीं, वो चाहे काफिर ही क्यों नहीं है फिर भी उनको माल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या दादा का भी यही हुक्म है या नहीं, क्या दादा इस वसीयत में शामिल होगा या नहीं? तो जाहिर रिवायत के मुताबिक दादा इस वसीयत के अंदर दाखिल होगा, क्योंकि यहां दादा का हुक्म बाप वाला नहीं है। जबकि हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक यहां दादा का हुक्म भी बाप वाला है, लिहाजा दादा भी इस वसीयत के अंदर दाखिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर कोई बच्चा मुर्तद हो जाए या मुसलमान हो जाए तो क्या उसके इर्तेदाद और इस्लाम का एतबार है या नहीं। तो तरफैन रहमहुमल्लाह यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चे का इर्तेदाद भी मोतबर और बच्चे का इस्लाम भी मोतबर है। अगर बच्चा इस्लाम ले आता है तो वह मुसलमान शुमार होगा और वह फिर अपने वालिदैन का वारिस नहीं बनेगा अगर उसके वालिदैन काफिर हैं। और अगर बच्चा मुर्तद होता है तो इसका इर्तेदाद भी मोतबर है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं बच्चे का इर्तेदाद तो मोतबर नहीं है, अलबत्ता बच्चे का इस्लाम मोतबर है। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि न बच्चे का इर्तेदाद मोतबर है और न इस्लाम मोतबर है। वो फरमाते हैं इस्लाम तो इसलिए नहीं मोतबर कि इस इस्लाम की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अगर इसके वालिदैन काफिर हैं तो यह वरासत से महरूम हो रहा है, लिहाजा इसका इस्लाम मोतबर नहीं। और नीज इस वजह से कि बच्चा इस्लाम के अंदर वालिदैन के ताबिया होता है, अगर आप बच्चे के इस्लाम का एतबार करेंगे तो गोया आपने बच्चे को असल करार दे दिया, हालांकि बच्चा तो ताबिया है इस्लाम के अंदर, तो लिहाजा इसको असल करार नहीं दिया जा सकता। तो उसका जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि हमारे नजदीक बच्चे का इस्लाम मोतबर है और दलील जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम है। आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में ही मुसलमान हो गए थे और आप इस पर फखर फरमाया करते थे। चुनांचे बाज रिवायात में है कि 7 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे, बाज रिवायात में 8, 9 और 10 वगैरह का जिक्र आता है, यानी बुलूगत से पहले ही ये मुसलमान हो गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम को सही करार दिया था भाई। और नीज दूसरी अकली दलील साहिब हिदाया ने दी थी कि हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता, हकीकत को रद्द नहीं किया जा सकता। यह बच्चा हकीकतन ईमान ले आया है क्योंकि यह अपनी खुशी से अपनी जुबान के जरिए ईमान का इकरार कर रहा है और जुबान जो है वो दिल की हालत की खबर देती है। मालूम हुआ इकरार बिल लिसान भी है और तस्दीक कल्बी भी है, लिहाजा यह हकीकतन जब एक चीज पाई जा रही है उसको रद्द नहीं किया जा सकता, उसको तस्लीम करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। और बाकी इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह ने जिक्र किया था कि इसके अंदर बच्चे का नुकसान है, तो उसका भी जवाब दिया कि इस इस्लाम और ईमान की वजह से बच्चे को हमेशा की नेकबख्ती हासिल हो रही है, आखिरत की नजात हासिल हो रही है और यही सबसे बड़े मुनाफे में से है इस्लाम के और ईमान के, और यही असल मकसूद है, यही असल मकसूद है इस्लाम और ईमान के जरिए। तो जब वो असल मकसूद हासिल हो रहा है तो अगर कोई साथ नुकसान वगैरह हो रहा है तो उसकी तरफ नजर नहीं की जाएगी भाई। तो कहते हैं वह हुवल हुक्मुल असलियु, और यही असली हुक्म है, यानी ईमान का यही असली हुक्म है कि इसकी वजह से हमेशा की नेकबख्ती और आखिरत की निजात हासिल हो और आखिरत की निजात हासिल हो जाएगी। तो यही ईमान और इस्लाम का असल हुक्म है, यानी यही इस्लाम और ईमान के जरिए मकसूद है। ईमान और इस्लाम के जरिए मकसूद क्या है कि हमेशा की नेकबख्ती मिल जाए और आखिरत के अजाब से नजात मिल जाए। तो यह मकसूद जब हासिल हो रहा है तो अब दूसरी चीजों की तरफ नजर नहीं की जाएगी। जब यह मकसूद हासिल हो रहा है तो इसी का एतबार होगा भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह बच्चे के इस्लाम का तो एतबार करते थे, अलबत्ता बच्चे के इर्तेदाद का एतबार नहीं करते थे कि इसमें बच्चे का महज नुकसान है, और जिस चीज में बच्चे का महज नुकसान हो उसका एतबार नहीं किया जाता। जैसे बच्चे का अगर निकाह करवाया गया है वह अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो इसमें बच्चे का नुकसान है, लिहाजा बच्चे की तलाक का कोई एतबार नहीं। या बच्चे को किसने गुलाम दे दिया है और बादशाह अपने गुलाम को आजाद करता है तो इसके अंदर बच्चे का सिर्फ नुकसान है, तो लिहाजा इस बच्चे के वो तसरुफात जिसमें नुकसान महज हो उनका कोई एतबार नहीं है। तो इसी तरह यहां इर्तेदाद के अंदर भी बच्चे का सिर्फ नुकसान ही है, लिहाजा बच्चे के इर्तेदाद का कोई एतबार नहीं। जबकि तरफैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं बच्चे का इर्तेदाद भी मोतबर है, इसलिए क्योंकि बच्चा हकीकतन मुर्तद हुआ है और जुबान से उसका इकरार कर रहा है, और एक चीज जब हकीकतन पाई जाए तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता, उसे मानना पड़ेगा। हां अलबत्ता इस बच्चे को इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा क्योंकि इस्लाम के अंदर उसका नफा है भाई, और नीज इस बच्चे को कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि कत्ल करना तो सजा है और बच्चा जो है उससे तो शरीयत ने सजाएं माफ कर दी हैं, सजाओं को बच्चे से उठा दिया गया है। तो उस पर शफकत करते हुए इस पर मैंने जिक्र किया कि बाज़ उलमा ने एतराज किया कि साहिब हिदायत को यह दलील जिक्र नहीं करनी चाहिए थी बल्कि यहां दूसरी दलील जिक्र करनी चाहिए थी। वजह यह कि इससे तो जाहिर होता है आप तो बच्चे पर रहम खाते हुए उसको सजा नहीं दे रहे, लेकिन वो जात जो अरहमुर राहिमीन है वो उसको हमेशा की सजा दे रही है। लिहाजा यहां दूसरी दलील जिक्र करनी चाहिए थी कि बच्चे को इर्तेदाद की वजह से इसलिए कत्ल नहीं किया जाएगा कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, क्योंकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि बच्चे का इर्तेदाद मुअतबर ही नहीं है। और साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि यह उस बच्चे का हुक्म है जो कुछ समझदार है, जो चीजों को समझता है, और अगर बच्चा छोटा है समझदार नहीं है तो फिर उसके इर्तेदाद का कोई एतबार नहीं। और यह इसी तरह है जैसे मजनून और वो शख्स के नशे की वजह से जिसकी अकल जायल हो जाए तो इनके भी इर्तेदाद का कोई एतबार नहीं, क्योंकि इर्तेदाद का ताल्लुक अकीदे से है और मजनून और नशे के अंदर जिस शख्स की अकल जायल हो जाए उसका तो कोई अकीदा नहीं होता। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल बुगात, बुगात भाई आखिर में गोल ता है भाई बुगात, और ये जमा है बागी की, बागी जैसे काजी की जमा है कुजात, इसी तरह बागी की जमा बुगात। याद रखो बागी वो लोग हैं कि जब तमाम मुसलमान एक इमाम के तख्त जमा हो गए और उसकी उन्होंने बैअत कर ली, और फिर उसके बाद मुसलमानों में से एक ग्रोह जुदा हो जाता है इमाम से। अगर ये मुसलमानों का ग्रोह इस वजह से जुदा हुआ है कि इमाम ने इन पर जुल्म किया है तो फिर याद रखो ये बागी नहीं है भाई। तवज्जो है, आगे बागी के अहकाम बयान होंगे कि बागियों से जंग की जाएगी, अगरचे वो भी मुसलमान हैं लेकिन उनका कत्ल जायज है। लेकिन अगर मुसलमानों पर जुल्म किया गया है और जुल्म की वजह से एक जमात इमाम से जुदा हो गई है तो ये बागी नहीं है, इनका किसी सूरत में इनका कत्ल जायज नहीं है। हां अलबत्ता अगर ये मुसलमानों की जमात इमाम से जुदा हो गई है और इमाम उनको बुला रहा है हक की तरफ कि आ जाओ हक की तरफ आ जाओ, और वो जवाब में कहते हैं नहीं हम हक पर हैं तुम ना हक हो, तो फिर इस सूरत में मालूम हो ये बागी हैं, इनके साथ लड़ना भी जायज और इनको कत्ल करना भी जायज है। और यह भी याद रखना कि इन बागियों के मसलों के अंदर हमारे मुक्तदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं भाई। वजह यह कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक जितनी जंगें हुई वो सारी कुफार के साथ जंगें थी, इससे कबल कभी मुसलमानों की आपस में जंग ही नहीं हुई थी। तो लिहाजा फुकहा फरमाते हैं कि यह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से ही है कि हमें बागियों के अहकाम मालूम हो गए, वरना हमें बागियों के अहकाम का पता ना चलता भाई, क्योंकि बगावत के अंदर दूसरे मुसलमानों को बागियों को कत्ल किया जाएगा भाई। तो ये किससे पता चला? हमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से पता चला। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज से भी जंग की, और इसी तरह हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा वो भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के मुकाबले में आए थे, उनसे भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग की भाई। तो इन लड़ाइयों से बागियों के अहकाम मालूम होते हैं भाई। तो कहते हैं बाबुल बुगाती, ये बाब है बागियों के बयान में। व इदा तगल्लब कौम मिनल मुस्लिमीन अला बलदिन, तगल्लुब का माना है जबरदस्ती कब्जा करना, कुव्वत और जोर के जरिए कब्जा करना। कहते हैं व इदा तगल्लब कौम मिनल मुस्लिमीन अला बलदिन, और जब जबरदस्ती कब्जा कर लिया मुसलमानों में से कुछ लोगों ने अला बलदिन किसी शहर पर, قوم عموماً طلبہ قوم کا ترجمہ قوم کے ساتھ ہی کرتے ہیں. ایک قوم نے قبضہ کر لیا, قوم کا معنی ہے لوگ, بھائی لوگ. اصل میں تو یہ 3 سے 10 تک مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں, لیکن زیادہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لوگ, بھائی لوگ. کہتے ہیں وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ, اور جب زبردستی قبضہ کر لیا مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے, عَلَى بَلَدٍ کسی شہر پر, وَخَرَجُوا مِن طَاعَتِ الْإِمَامِ, اور وہ امام کی اطاعت سے نکل گئے, انہوں نے امام کی اطاعت سے انکار کر دیا, دَعَاهُمْ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ, تو امام ان کو بلائے گا مسلمانوں کی جماعت کی طرف لوٹنے کی طرف, تو امام ان کو بلائے گا مسلمانوں کی جماعت کی طرف لوٹنے کی طرف کہ واپس آ جاؤ, سب کے ساتھ مل جاؤ. وکشف عن شبہاتہم, اور امام ان کے شبے کو دور کرے گا, یعنی اگر ان کے کوئی اعتراضات وغیرہ ہیں تو امام ان کو دور کرے گا. تو کہتے ہیں امام ان کو جماعت کی طرف پھر بلائے گا, وکشف عن شبہاتہم, اور ان کے شبہے کو دور کرے گا, لأن علی رضی اللہ تعالی عنہ فعل كذلك بأهل حرورا قبل قتالهم, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فعل كذلك اسی طرح کیا تھا, بأهل حرورا, اہل حرورا کے ساتھ, قبل قتالهم ان کے ساتھ لڑائی سے پہلے. اہل حرورا, بھائی یہ حرورا یہ کوفہ کے بالکل قریب ہی ایک بستی تھی, کوئی 2 میل کے فاصلے پر. بھائی تو خوارج کے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو کر یہ حرورا بستی کے اندر جمع ہو گئے تھے, اور کہتے ہیں ان کی تعداد کوئی 6,000 تھی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے, تو ان میں سے کافی لوگ مطمئن ہو گئے اور کہتے ہیں 6,000 میں سے تقریباً 2,000 واپس آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, جبکہ 4,000 اسی طرح اپنی ضد پر رہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہترین جوابات ان کو دیے کہ جو حق کا متلاشی ہو اس کے لیے وہ جوابات کافی تھے, لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے. تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ان سے جنگ کی اور ان کو قتل کر دیا گیا. بھائی تو معلوم ہوا کہ امام جو ہے اگر باغیوں کی کوئی جماعت ہے تو امام اولاً جو ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے, ان کو دعوت دے, ان کے شبے کو دور کرے, اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو پھر اس کے بعد لڑائی کی طرف جائیں گے. بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَعَلَ كَذَلِكَ, اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا, بِأَهْلِ حَرُورَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ, اہل حرورا کے ساتھ ان کی لڑائی سے پہلے. میں نے بتایا حرورا یہ بستی ہے. بھائی وَلِأَنَّهُ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ دو چیزوں میں سے زیادہ آسان ہے, ایک ہے لڑائی اور ایک ہے بات چیت اور دعوت. بھائی تو بات چیت اور دعوت آسان ہے, اگر اسی کے ذریعے ان کا شر ختم ہو جاتا ہے تو لہذا پہلے اسی کی کوشش کی جائے گی. کہتے ہیں ولی انہ احون الامرین, اور اس لیے کیونکہ یہ دو چیزوں میں سے زیادہ آسان ہے, ولعل الشر یندفع به, اور شاید کہ شر اسی کے ذریعے دور ہو جائے, فیبدا به, لہذا اسی یعنی دعوت سے ہی ابتدا کی جائے گی, ولا یبدا بقتال حتى یبدؤه. بھئی یہ قدوری کا متن چل رہا ہے, صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ امام لڑائی کی ابتدا نہیں کرے گا کیونکہ وہ دوسرے بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا تو قتل جائز نہیں, لہذا امام لڑائی کی ابتدا نہ کرے. ہاں جب وہ لڑائی کی ابتدا کر دیں تو پھر اس کے بعد امام بھی لڑائی شروع کر دے. لیکن صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عند الاحناف لڑائی جائز ہے, لڑائی جائز ہے, اس لیے کیونکہ اگر ہم ان کی لڑائی کے انتظار میں رہیں گے تو بسا اوقات وہ اور زیادہ قوت پکڑ جائیں گے اور پھر امام کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ولا یبدا بقتال, اور امام آغاز نہ کرے لڑائی کا, حتا یبدؤہ, یہاں تک کہ باغی لڑائی کا آغاز کر دیں, فان بدؤہ, اگر وہ اس لڑائی کا آغاز کریں, قاتلہم, تو امام ان سے لڑائی کرے گا, حتی یفرق جمعہم, یہاں تک کہ ان کی جمعیت جو ہے وہ منتشر کر دے, ان کی इनकी जमईयत मुंतशिर कर दे, उसे बिखेर दे, यानी उनकी कुव्वत खत्म कर दे। काल अल अब्दु ज़ईफ, इससे मुराद साहिब हिदाया है। काल अल अब्दु ज़ईफ, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, हा कदा ज़करहुल कुदूरी रहिमहुल्लाह तआला फी मुख्तसरिही, कि इसी तरह जिक्र फरमाया है इमाम कुदूरी ने अपनी मुख्तसर में, कि इमाम लड़ाई की इब्तिदा न करे यहां तक कि वो लड़ाई का आगाज करें। कहते हैं इसी तरह साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया है, वदा करल इमामुल मारूफ बिखाहर ज्यादा अन्ना यजूजू अं यबदा अबी किताहिम ईदा तास करू वजतमाऊ। तो साहिब कुदूरी ने कहते हैं इसी तरह जिक्र फरमाया है, लेकिन इमाम खाहरजादा ने जिक्र किया है कि इमाम के लिए जायज है कि वो लड़ाई का आगाज करे। भाई इमाम खाहरजादा, भाई इमाम खाहरजादा ये बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं अहनाफ के, और इनकी तारीख वफात है 483 हिजरी, 483 हिजरी, और ये बहुत बड़े अहनाफ के इमाम गुजरे हैं फिका के अंदर भाई। और इनको खाहरजादा कहते थे। खाहरजादा का माना है भांजा, यानी बहन का बेटा। वजह यह कि ये समरकंद का जो काजी था ये उनके भांजे थे, तो इसी नाम से ये मशहूर हो गए। तो इमाम खाहरजादा भाई, तो ये फारसी में खाहर बहन को कहते हैं, खाहर बहन को कहते हैं, खाहरजादा बहन का बेटा यानी भांजा। और इसमें याद रखो ये जो खाहर लफ्ज है इसमें वो को बड़ा खफीफ सा पढ़ते हैं, खाहरजादा, तवज्जो है, खाहर ज़ादा। तो कहते हैं वदा करल इमामुल मारूफ भी खाहर ज़ादा, और जिक्र किया है वो इमाम जो मशहूर हैं खाहर ज़ादा के नाम से, उन्होंने जिक्र किया है कि अन्नाइंदाना यजूज़ु अन यबदा अबी क़िताल्हिम, कि हमारे नजदीक जायज है कि इमाम इनके साथ लड़ाई का आगाज करे, इज़ा तअस्करू वजतमाऊ, जब बागी जमा हो जाए, जब बागी जमा हो जाएं। याद रखो यहां आया इजा तअस्करू वजतमाऊ, याद रखो ये अत्वे तफसीरी है। तअस्कुर का माना भी है जमा होना, और इज्तिमा का माना भी जमा होना, तो ये उसी का माना बयान फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। वैसे तो अस्कर लश्कर को कहते हैं, लेकिन तअस्कुर का माना है जमा होना। कहते हैं कि इमाम के लिए जायज है कि उनसे लड़ाई की इब्तिदा करे, इजा तास करू वजतमाऊ, जब वो इकट्ठे हो जाएं, जब बागी सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, तो अब मालूम हुआ उनका इरादा भी लड़ाई ही का है, लिहाजा इमाम लड़ाई का आगाज कर सकता है भाई। وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز حتى يبدأ بالقتال حقيقة। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जायज नहीं है कि इमाम लड़ाई की इब्तिदा करे, यह जायज नहीं है। हत्ता यबदाउ बिल किताल हकीकतन, यहां तक कि वो बागी हकीकतन लड़ाई का आगाज कर दें, जब वो लड़ाई शुरू कर दें फिर इमाम भी लड़ाई कर सकता है। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं ला यजूज़ के इमाम के लिए लड़ाई की इब्तिदा जायज नहीं है। हत्ता यबदाउ बिल किताल हकीकतन, यहां तक कि वह बागी हकीकतन लड़ाई का आगाज कर दें। लिअन्नहु ला यजूज़ कत्लुल मुस्लिमी, क्योंकि सलमान का कत्ल जायज नहीं है। इल्ला दफ़अन, मगर दफा के लिए, मगर दफा के लिए, यानी उनकी लड़ाई और उनके शर को दूर, मुसलमान की लड़ाई और शर को दूर करने के लिए उसे कत्ल करना जायज है, वैसे मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं है। कहते हैं लिअन्नहु ला यजूज़ कत्लुल मुस्लिमी इल्ला दफ़अन, इसलिए क्योंकि मुसलमान का कत्ल जायज नहीं है मगर उसकी लड़ाई को या उसके शर को दफा करने के लिए। वहुम मुस्लिमूना, और हाल यह है कि ये बागी भी मुसलमान हैं, तो लिहाजा इनसे लड़ाई का आगाज नहीं किया जाएगा, इनको कत्ल नहीं किया जाएगा जब तक ये खुद लड़ाई शुरू न कर दें। बिखिलाफ इल काफिर, बखिलाफ काफिर के, लिअन्ना नफ्सल कुफ्र मुबीहुन इंदहू, इसलिए क्योंकि नफ्स कुफर जो है मुबीहुन, वो मुबाह करने वाला है, यानी काफिर के कत्ल को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक काफिर का कुफर जो है ये उसके कत्ल को जायज कर देता है, मुसलमान का कत्ल जायज नहीं, सिर्फ उसके लड़ाई को और उसके शर को दूर करने के लिए मुसलमान का कत्ल जायज है, जबकि काफिर का कत्ल जो है उसके कुफर की वजह से जायज है। یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. ان کے نزدیک کافر کا قتل مباح ہے. کس وجہ سے؟ اس کے کفر کی وجہ سے. جبکہ عند الاحناف کافر کا قتل جائز ہے جنگ کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے نہیں. توجہ ہے؟ اس لیے کیونکہ دارالاسلام کے اندر کتنے ہی کافر رہتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے والے نہیں, وہ تو ہمارے احکام مان کر ہماری مملکت میں رہ رہے ہیں, تو یہاں ان کی طرف سے جنگ نہیں تو ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جبکہ حربی جو ہے دارالحرب کا رہنے والا وہ ہم سے حالت جنگ میں ہیں, تو وہاں جو ان کا قتل مباح ہے وہ حرب کی وجہ سے ہے, جنگ کی وجہ سے ہے, کفر کی وجہ سے نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ نَفْسَ الْكُفْرِ مُبِيحٌ عِنْدَهُ, اس لیے کیونکہ نفس کفر ہی قتل کو جائز کرنے والا ہے. عِنْدَهُ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. ولانا, اور ہماری دلیل یہ ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر ہو گئی کہ مسلمان کا قتل جائز نہیں مگر صرف اس کے لڑائی کے شر کو دور کرنے کے لیے, اور جب تک انہوں نے لڑائی کا آغاز نہیں کیا تو امام کے لیے بھی ان سے لڑائی کرنا اور انہیں قتل کرنا جائز نہیں. لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر حکم کا مدار علت پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل علت پر ہوگا. جیسے دیکھو سفر کے اندر شریعت نے نماز قصر کرنے کا حکم دیا کہ چار رکعت فرض کے بجائے دو رکعت انسان ادا کرے گا, اور اس کی اصل علت جو ہے وہ ہے مشقت, کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو شریعت نے نرمی کر دی احکام کے اندر. لیکن یہ مشقت اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ بعض لوگوں کو تھوڑے سفر سے مشقت ہو جاتی ہے اور بعض کو زیادہ سفر سے بھی مشقت نہیں ہوتی. تو چونکہ مشقت ایک امر باطنی ہے لہذا حکم کا مدار دلیل مشقت یعنی سفر پر ہی کر دیا گیا. جو چیز مشقت کی دلیل ہے یعنی سفر, اسی پر حکم کا مدار کر دیا گیا کہ جو شخص بھی تین دن کی مسافت یا اس سے زیادہ کا ارادہ کرتا ہے تو سفر موجود ہے, اور جب سفر موجود ہے تو گویا مشقت بھی موجود ہے, لہذا نماز قصر کرنا پڑے گی. تو معلوم ہوا قصر کا مدار, قصر کا مدار دلیل مشقت پر ہو گیا. اسی طرح یہاں پر بھی اس حکم کا مدار لڑائی پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل لڑائی پر ہوگا, دلیل قتال پر ہوگا, اور دلیل قتال یہاں موجود ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ سارے, جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں معلوم ہو ان کا مقصد ہی مسلمانوں سے لڑائی کرنا ہے. خود ان کی طرف سے اگرچہ ابھی تک لڑائی کا آغاز نہیں ہوا, قتال تو نہیں موجود لیکن دلیل قتال تو موجود ہے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں, اسی لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا امام کی طرف سے لڑائی کا آغاز, باغیوں کے قتال پر اس کا مدار نہیں ہوگا بلکہ دلیل قتال پر یعنی ان کے جمع ہونے پر ہوگا. اور جب باغی ایک جگہ جمع ہیں تو دلیل قتال موجود ہے, جب دلیل قتال موجود ہے تو گویا ان کی طرف سے قتال موجود ہے, لڑائی موجود ہے, اور جب ان کی طرف سے لڑائی موجود ہے تو امام اب لڑائی کر سکتا ہے, امام لڑائی کا آغاز کر سکتا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی. ولانا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الحکم یدار علی الدلیل, کہ اس حکم کا مدار جو ہے دلیل پر ہوگا یعنی دلیل قتال پر ہوگا. وہو الاجتماع والامتناع, اور وہ ان کا اکٹھا ہونا ہے. والامتناع, اور رکنا ہے. امتناع کا کیا معنی؟ رکنا, باز آ جانا, یعنی یہ امام کی اطاعت سے رک گئے ہیں. تو لہذا ان کا اکٹھے ہونا اور امام کی اطاعت سے رک جانا یہ دلیل قتال موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس حکم کا مدار دلیل قتال پر ہے. وہ الاجتماع والامتناع, اور وہ ان باغیوں کا اکٹھا ہونا اور امام کی اطاعت سے رکنا ہے. وہذا لانہ لو انتظر الامام, اور یہ اس لیے کیونکہ اگر امام انتظار کرے حقیقت قتالہم, ان کی حقیقتا لڑائی کا, تو ربما لا یمکنہ الدفع, تو بسا اوقات امام کے لیے ممکن نہیں رہے گا ان کی لڑائی کو دور کرنا, یعنی امام مقابلہ ہی نہ کر سکے گا, وہ اتنی قوت پکڑ جائیں گے. فیدار علی الدلیل, تو اس حکم کا مدار دلیل پر ہوگا. ضرورت دفع شرہم, ان کے شر کو دفع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے, ان کے شر کو دفع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے. بھائی باغیوں کے شر کو دور کرنا ضروری ہے, لہذا اس لیے ان کے ساتھ امام لڑائی شروع کرے, اس حکم کا مدار ان کی لڑائی یعنی ان کے قتال پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل قتال پر ہوگا, کیونکہ ان کا شر دور کرنا ضروری ہے. اور الضرورت تبیح المحظورات, ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے. तो कहते हैं फयुदारु अलद दलील जरूरत दफ शर्रहिम, लिहाजा इस हुक्म का मदार जो है दलील पर होगा उनके शर को दफा करने के जरूरी होने की वजह से। वह इदा बलगहु अन्नहुम यश्तरून सिलाह, भाई अगर इमाम को लड़ाई से पहले ही पता चल गया, इनके जमा होने से पहले पता चला कि ये असलहा वगैरह जमा कर रहे हैं, तो इमाम इनको पकड़ ले, इनको कैद में डाल दे और उनसे तो इनका असलहा छीन ले। हां, इमाम के लिए अभी कत्ल करना जायज नहीं है क्योंकि वो अभी इकट्ठे नहीं हुए, तो इमाम इनको पकड़ ले और कैद में डाल दे यहां तक कि वो तौबा कर लें, तो फिर इनको छोड़ दे और इनकी चीजें इनको वापस कर दे। भाई तो कहते हैं वह इदा बलगहू अन्नहुम यश्तरून सिलाहा, और जब इमाम को यह बात पहुंचे कि वो बागी जो है वो असलहा खरीद रहे हैं, वह यतअहबून अलकिताला, और वो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तअहुब का माना है तैयारी करना, वह यतअहबून अलकिताला, और वो बागी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यम बगी अय्यहुदहुम, तो इमाम के लिए मुनासिब है कि इनको पकड़ ले, वह यहबिसहुम, और इनको कैद कर ले, हता युक्लिऊ अन ज़ालिका, अकला युकलिऊ के माने है किसी चीज से हट जाना, किसी चीज से रुक जाना, हत्ता युकलिऊ अन ज़ालिका, यहां तक कि वो इससे रुक जाएं, इस अपने इस इरादे से रुक जाए, वह युहदिसू तौबतन, और यहां तक कि वो तौबा कर लें, दफअन लिशर्र बिकद्रिल इम्कान, ये इल्लत जिक्र कर रहे हैं कि इमाम इनको पकड़ ले और कैद कर दे, क्यों, दफअन लिशर्र बिकद्रिल इम्कान, ताकि जिस कदर मुमकिन हो सके उस हद तक इनके शर को दूर कर दिया जाए, तो यहां पर उनको कैद में डाल देगा तो इनका शर दूर हो जाएगा। तो कहते हैं दफअन लिशर्र बिकद्रिल इम्कान, इनके शर को दूर करते हुए बकद्र इम्कान यानी जिस कदर मुमकिन हो सके। वल मरवी अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, यहां से साहिब हिदायत के एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि मालूम हुआ बागियों से लड़ाई करना और उनके साथ जंग करना और उन्हें कत्ल करना जायज है, हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मुसलमानों के दरमियान फितना वाके हो जाए, मुसलमानों के दरमियान फितना वाके हो जाए, मुसलमान आपस में लड़ें, तो उस वक्त हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो अपने घर में ही रहे, यानी उसे इस फितने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तवज्जो है, उसको इस फितने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि इमाम साहब का यह कौल कि इस मौके पर मुसलमान अपने घरों में ही रहें, यह उस सूरत में है जब मुसलमानों का इमाम ना हो। जब मुसलमानों का इमाम मौजूद है तो उसकी मदद करना यह वाजिब है, तो फिर उसमें लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा इमाम की तरफ से उस फितने को खत्म करने के लिए। कहते हैं वलमरबी युआन अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला, और वो जो रिवायत किया गया है इमाम साहेब से, मिन लुजूम मिल बैती, यानी अपने घर को अपने कमरे को लाजिम पकड़ने को, महमूल उन अला हाल अदमिल इमामी, तो ये रिवायत महमूल है इमाम के न होने की हालत पर, अम्मा इआनतुल इमामिल हकी, बाकी इमाम हक की मदद करना, फमिनल वाजिबी, तो ये भी वाजिबात में से है, इंदल गना इवल कुदरती, मालदारी और कुदरत के होते हुए, जब एक इंसान को मालदारी है यानी घर की किफायत है, बकदरे जरूरत माल उसके पास घर वालों के लिए मौजूद है और कुदरत भी है, उसमें इमाम की मदद कर सकता है अपनी जान और माल के जरिए, तो उसको मदद करना उस पर वाजिब है। भाई तो यह माना है कि बाकी इमाम हक की मदद करना, फमिनल वाजिबी, तो यह वाजिब में से है, इंदल गना इवल कुदरती, जब मालदारी और कुदरत हो, फइन कानत लहुम फिअतुन उजहिज़ अला जरीहिहिम व उत्बिअ मुवल्लीहिम, भाई सूरत मसला यह कि इमाम के साथ बागियों की लड़ाई शुरू हो गई और फिर ये इमाम को फतह हासिल हुई और बागियों के बहुत से लोग जख्मी हैं और बाज भाग रहे हैं, तो क्या इन जख्मियों को कत्ल किया जाएगा और क्या ये जो भाग रहे हैं इनको पकड़ा जाएगा ताकि इनको कैदी बनाया जाए या कत्ल किया जाए? कहते हैं अगर इनकी कोई और जमात मौजूद है, ये एक जमात तो इमाम से लड़ रही है और दूसरी जगह इनकी एक और जमात मौजूद है, तो इस सूरत में फिर जो जख्मी हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा और जो भाग रहे हैं उनको पीछा किया जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा, और फिर इमाम चाहे उनको कत्ल कर दे और चाहे उनको कैद में रखे, इमाम की मर्जी है। वजह यह कि अगर आप इनको कत्ल नहीं करेंगे, ये फिर वो जाकर उस ग्रोह के साथ मिल जाएंगे और फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन लेकिन बागियों के साथ इमाम की लड़ाई हो रही है और कोई दूसरी जगह इनका कोई ग्रोह वगैरह मौजूद नहीं है, फिर इनके जख्मियों को कत्ल नहीं किया जाएगा और ना इनके भागने वालों का पीछा किया जाएगा। भाई बात समझ में आ गई, क्योंकि उनका शर खत्म हो चुका है। भाई कहते हैं फईन कानत लहुम फिअतुन, फिअतुन भाई फिआ कहते हैं जमात को, जमात कहते हैं फईन कानत लहुम फिअतुन, और अगर बागियों की कोई और जमात है, उजहिजा अला जरीहिहिम, अजहजा अलल जरीह, भाई अरबी में कहते हैं अजहजा अलल जरीह, जल्दी से जख्मी का काम तमाम कर देना, यानी उसको कत्ल कर देना, जख्मी को जल्दी से कत्ल कर देना, उसका काम तमाम कर देना, इसको कहते हैं अजहजा अलल जरीह, उसने जल्दी से जख्मी का काम तमाम कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो कहते हैं फइन कानत लहुम फिअतुन, अगर इन बागियों की कोई और जमात है, उजहिजा अला जरीहिहिम, तो इनके जख्मियों को कत्ल कर दिया जाएगा, व उतबिया मुवल्लीहिम, और पीछा किया जाएगा मुवल्लीहिम, इनके पुश्त फेरने वालों का। वल्ला युवल्ली तौलिया का क्या माना है? पुश्त फेरना। व उतबिया मुवल्लीहिम, और इनके पुश्त फेरने वालों का पीछा किया जाएगा, दफअन लिशर्रिहिम, उनके शर को दूर करने के लिए, कई ला यल्तहिकू बिहिम, ताकि कहीं वो उस जमात के साथ जाकर न मिल जाए। वह इल्लम यकुल लहुम फिअतुन, और अगर इन बागियों की कोई और जमात नहीं है, लम युजहज अला जरीहिहिम, तो इनके जख्मियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, वलम युतबा मुवल्लीहिम, और इनके पुश्त फेरने वालों का पीछा नहीं किया जाएगा, लिंदिफाई शर दूनहू, क्योंकि इसके बगैर ही शर दूर हो गया है। وقال الشافعي رحمه الله, और इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं, لا يجوز ذلك في الحالين, के दोनों हालतों में यह जायज नहीं है, यानी उनके जख्मियों को कत्ल करना या उनके भागने वालों का पीछा करना, यह दोनों हालतों में जायज नहीं है, यानी चाहे उनकी जमात हो या चाहे जमात न हो। तो कहते हैं दोनों हालतों में यह जायज नहीं है, लिअन्न अल-क़िताल इज़ा तरकूहू, इसलिए क्योंकि जब लड़ाई को उन्होंने छोड़ दिया, लड़ाई को छोड़ दिया, भाग गए हैं, लम यबक क़त्लुहुम दफ़अ, तो इनका कत्ल जो है वो दफ़े शर होकर बाकी ना रहा, अब इनका कत्ल दफ़े शर के लिए नहीं, क्योंकि लड़ाई इन्होंने छोड़ दी है। तो और मुसलमान का कत्ल सिर्फ किस सूरत में जायज है? उसके शर को दफा करने के लिए। तो जब ये भाग रहे हैं तो इनका शर तो दफा हो गया है, लिहाजा इनको कत्ल नहीं किया जा सकता। कहते हैं लिअन्न अल-क़िताल इज़ा तरकूहू लम यबक़ा क़त्लुहुम दफ़अन, इसलिए क्योंकि जब इन्होंने लड़ाई छोड़ दी है तो इनका कत्ल दफ़े शर होकर बाकी ना रहा, व जवाबुहू मा ज़करनाहू, यहां से साहिब हिदाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का जवाब दे रहे हैं। कहते हैं व जवाबुहू मा ज़करनाहू, और इसका जवाब वो है जो हमने जिक्र कर दिया, कि अन्नल मुअतबरा दलीलुहू ला हकीकतुहू, कि वो चीज जिसका एतबार किया जाएगा वो दलील क़िताल है, न कि हकीकत क़िताल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं लड़ाई छोड़ गए हैं, ये भाग रहे हैं, तो क़िताल नहीं, जब क़िताल नहीं तो इनका कत्ल भी जायज नहीं। हम कहते हैं कि यहां क़िताल को नहीं देखा जाएगा, दलील क़िताल को देखा जाएगा, और दलील क़िताल क्या थी? कि वो एक जगह जमा है, इकट्ठे हैं, तो दूसरी जगह इनकी जमात जमा है, इकट्ठी है, तो दलील क़िताल मौजूद है, लिहाजा इनको कत्ल किया जाएगा। तो कहते हैं वह जवाबुहू मा ज़करनाहू, और जवाब इसका वो है जो हमने जिक्र कर दिया, कि अन्नल मुअतबरा दलीलुहू ला हकीकतुहू, कि वो चीज जिसका एतबार किया जाएगा वो दलील क़िताल है, ला हकीकतुहू, ना के हकीकत क़िताल। आगे देखिए, वला युसबा लहुम दुर्रियतु वला युक्सम लहुम मालुन, यहां से बागियों के माल और औलाद का हुक्म बयान कर रहे हैं, कि कुफार और हर्बियों के साथ हमारी जंग होती है तो उनका माल माले गनीमत होता है, और उनकी औलाद और बीवी बच्चे जो हैं उनको कैद कर लिया जाता है, उनको गुलाम और बांदियां बना लिया जाता है, तो क्या बागियों का भी यही हुक्म है? कहते हैं नहीं, बागी मुसलमान है, उनका यह हुक्म नहीं है। भाई तो कहते हैं वला युसबा लहुम जुर्रियतुन, जुर्रियत मैंने आपको बताया था औलाद को कहते हैं, कहते हैं वला युसबा लहुम जुर्रियतुन, और कैदी नहीं बनाया जाएगा इनकी औलाद को, वला युक्समु लहुम मालुन, और तकसीम नहीं किया जाएगा उनके माल को, लिकौल अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौमल जमल, बवजह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के कि आपने यौमुल जमल के दिन फरमाया। यौमुल जमल भाई, जंगे जमल भाई, भाई जंगे जमल, ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो तमाम सहाबा और तमाम मदीने वालों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली गई। और इन्हीं बैत करने वालों में हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी शामिल थे। लेकिन फिर वो यहां से निकल गए और कहने लगे कि हमने खुशी से हमने उनकी बैत नहीं की। तो चुनाचे यहां से निकलकर मक्का चले गए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का मुतालबा किया कि जिन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है उनसे किसास लिया जाए। जबकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय यह थी कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि किसास लिया जाए, क्योंकि वो लोग अभी कुव्वत में थे, तो अगर किसास लेंगे तो और फितना फैलेगा, तो जरा जब हालात काबू में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम किसास लेंगे। लेकिन वो फौरी किसास का मुतालबा कर रहे थे। चुनांचे हजरत तलहा और हजरत जुबैर इन्होंने और लोगों को भी अपने साथ मिलाया और इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा वो भी इनके साथ हो गई और फिर ये लड़ने के लिए आ गए भाई। तो चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो इनके मुकाबले के लिए निकले और फिर कहते हैं बहुत अजीम जंग हुई और जिसमें तकरीबन 13,000 लोग कत्ल हो गए भाई। इसी में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों भी कत्ल हो गए और उनको शिकस्त हो गई। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन ऐलान फरमा दिया किसी कैदी को कत्ल न किया जाए और किसी औरत की बेइज्जती और पर्दा दरी न की जाए और किसी का माल न छीना जाए भाई, किसी का माल न छीना जाए। और इस जंग को जंगे जमल इसलिए कहते हैं कि इसमें हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो एक ऊंट पर सवार थीं और ऊंट को जमल कहते हैं अरबी जुबान में, तो इसलिए जंगे जमल के नाम से मशहूर है भाई। चुनाचे जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये ऐलान फरमाया तो बास ने एतराज किया कि अगर ये मुसलमान थे फिर तो हमारे लिए कत्ल ही जायज नहीं था, और अगर ये मुसलमान नहीं है तो फिर तो हमारे लिए ये इनकी औरतें और बच्चे और इनका माल सब जायज होगा। तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और फरमाया कि इनके अंदर तुम्हारी अम्मी आयशा भी मौजूद हैं, तो क्या और औरतों की तरह तुम इनको भी अपने लिए हलाल समझोगे? तो लोग जो है चौंक उठे और माफी तलब करने लगे कि वाकई जो है हमने गलत बात की है। तो कहते हैं لقول علي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل بوجه حضرت علي رضي الله تعالى عنه کے جو يوم الجمل کے دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا يقتل اسير اور نہ کسی قیدی کو قتل کیا جائے ولا يكشف ستر اور نہ کوئی پردہ کھولا جائے یعنی کسی عورت کی پردہ دری نہ کی جائے بے عزتی نہ کی جائے ولا يؤخذ مال اور نہ کوئی مال لیا جائے وهو القدوة في هذا الباب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہی پیشوا ہیں اس باب میں، باغیوں کے ساتھ لڑائی میں وہی پیشوا ہیں، تمام احکام ہمیں انہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ وقوله في الاسير، اچھا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ذکر کیا ولا يقتل اسير کہ قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور اوپر صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو پشت پھیرنے والے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کو قید کرنا بھی جائز اور قتل کرنا بھی جائز ہے بھائی۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اوپر بتلایا تھا کہ اگر ان کی کوئی الگ جماعت ہے پھر ان کا قتل یا ان کو قیدی بنانا جائز ہے، اگر ان کی کوئی اور جماعت نہیں ہے تو پھر ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بھائی۔ कहते हैं वकौलुहु फिल असीरी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल कैदी के बारे में तावीलुहु तो उनके कलाम की तावील यह है कि इदा लम यकुल लहुम फिअतुन के जब उनकी कोई और जमात न हो फइन कानत और अगर उनकी कोई और जमात है तो यक्तुलुल इमामुल असीरा तो इमाम कैदी को कत्ल कर सकता है व इन शाअ हबसहु और अगर चाहे तो उसको कैद कर सकता है लिमा जकरना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि इनके शर को दफा करने के लिए क्योंकि इनकी और जमात मौजूद है तो ये उनके साथ जाकर मिल जाएंगे लिहाजा इनके शर को दफा करने के लिए इमाम के लिए जायज है कि कैदियों को कत्ल कर दे या कैद में डाल दे। तो कहते हैं फईन कानत अगर इन बागियों की कोई अलग जमात मौजूद है तो यक्तुलुल इमामुल असीरा तो इमाम कैदी को कत्ल कर सकता है व इन शाअ हबसहु और अगर चाहे तो उसको कैद में डाल दे लिमा ज़करना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया यानी इनके शर को दूर करने के लिए वली अन्नहुम मुस्लिमून यहां से दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि इनकी औलाद को कैद नहीं करेंगे और इनके माल को लड़ने वालों में तकसीम नहीं करेंगे। तवज्जो है, पहली दलील तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कौल है। अब अकली दलील दे रहे हैं, कहते हैं वली अन्नहुम मुस्लिमून, और इसलिए क्योंकि ये जो बागी हैं ये भी मुसलमान हैं। वल इस्लाम यासिमुन नफ्स वल माला, और इस्लाम जो है वो तो जान और माल को महफूज करता है। इस्लाम की वजह से मुसलमान की जान भी मासूम और उसका माल भी मासूम हो जाता है। कहते हैं वली इस्लाम यासिमुन नफ्स वल माला, और इस्लाम जो है जान और माल की हिफाजत करता है। वला बासबि अन युकातिलू बिसिलाहिहिम इन इहताजल मुस्लिमून इलैह। यहां से यह बतला रहे हैं, क्या बागियों से छीना हुआ असलहा उसके लिए भी बागियों से लड़ा जा सकता है? क्या इमाम बागियों से छीने हुए असलहे को मुसलमानों में तकसीम कर सकता है ताकि वो उनसे लड़ाई करें? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, बागियों के असलहे से नफा उठाना जायज नहीं, क्योंकि वो मुसलमानों का माल है और मुसलमानों के माल से उनकी रजामंदी के बगैर नफा उठाना जायज नहीं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अगर मुसलमानों को हाजत है, मुसलमानों के पास असलहा वगैरह कम है, तो फिर मुसलमान उनके असलहे से भी लड़ सकते हैं। भाई कहते हैं वला बासा भी अं युकातिलू बिसिलाहिहिम, और कोई हरज नहीं है कि आम मुसलमान लड़ाई करें बागियों के असलहे के साथ। इन इहताज अल मुस्लिमून इलैही, अगर मुसलमान इसके मोहताज हों। वकाल शाफिय रहमहुल्लाह ताला ला यजूज़ु, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह जायज नहीं है। वल कुराउ अला हादल खिलाफ, कुराअ बय्ये लफ्ज़ पहले भी गुजर चुका है, मैंने आपको बताया था कि कुराअ जो है ये असलहे और घोड़े वगैरह जो सवारी है इनके मजमूए को कहते हैं, लेकिन यहां इससे मुराद बस वो सवारी है, घोड़े या ऊंट वगैरह, और वजह यह कि असलहे का जिक्र पीछे आ गया भाई। तो कहते हैं वल कुराउ अला हादल खिलाफी, और ऊंट और घोड़े वगैरह जो सवारियां हैं वो भी इसी इख्तिलाफ पर हैं, यानी हमारे नजदीक बागियों के ऊंट और घोड़े मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना उन बागियों के साथ लड़ाई करते हुए जायज है, और जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं। यह माना है वल कुराउ अला हादल खिलाफी, और कुरा जो है वो भी इसी इख्तिलाफ पर है। लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहू मालु मुस्लिमीन, के मुसलमान का माल है। फला यजूज़ इंतफाउ बिही इल्ला बिरिज़ाहू, लिहाजा इससे फायदा उठाना जायज नहीं है मगर उस मुसलमान की रजामंदी से। वलाना, और हमारी दलील यह है अन्न अली रजी अल्लाह قسم السلاح فيما بين اصحابه بالبصرة कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने असलहा तकसीम फरमाया। فيما بين اصحابه अपने साथियों के अंदर, بالبصرة बसरा में, وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك, और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने की यह तकसीम जो थी للحاجة हाजत और जरूरत की वजह से थी, لا للتمليك मालिक बनाने के लिए नहीं थी, हाजत की वजह से इस्तेमाल करना जायज है। चुनांचे इसीलिए कहते हैं लड़ाई के बाद वो असलहा वगैरह उन सब ने वापस जमा करवा दिया। तो कहते हैं वकानत किस्मतुहु लिल हाजती लाल तमलीकी, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह तकसीम जो है हाजत की वजह से थी, मालिक बनाने के लिए नहीं थी। वली अन्न लिल इमामी अन यफअल ज़ालिका फी मालिल आदिल इंदल हाजती, वली अन्न लिल इमाम, और इसलिए क्योंकि इमाम के लिए जायज है अय्यफअला दालिका कि वो ऐसा करे, फी मालिल आदिल गैर बागी के माल में। यहां आदिल का माना करें गैर बागी, आदिल जो काबिल एतमाद आम मुसलमान है, ये किसके मुकाबले में आया? बागी के मुकाबले में। जब आम मुसलमानों का माल खलीफा जरूरत के वक्त लड़ने वालों को दे सकता है तो बागियों का माल बतरीके औला दे सकता है। कहते हैं वली अन्न लिल इमामी, और इसलिए क्योंकि इमाम के लिए जायज है अय्यफअल ज़ालिका फी मालिल आदिली के वो ऐसा करे गैर बागी के माल में, इंदल हाजती जरूरत के वक्त, फफी मालिल बागी औला, तो बागी के माल में बतरीके औला ऐसा करना उसके लिए जायज होगा भाई। वल माना फीही इल्हाकु ज़ररिल अदना लिदफ़इल आला, वल माना फीही, और इल्लत इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर इल्हाकु ज़रर इल अदना, थोड़ा ज़रर मिलाना, लिदफ़इल आला, आला ज़रर को दूर करने के लिए, ज्यादा ज़रर को दूर करने के लिए। भाई बागी का माल इस्तेमाल किया जाएगा, अगरचे बागी भी मुसलमान है लेकिन इसके अंदर सिर्फ उस बागी का नुकसान है, जबकि दूसरी तरफ इस लड़ाई की वजह से तमाम मुसलमानों का फायदा होगा कि बागियों का शर दूर हो जाएगा। तो बड़े नुकसान को दूर करने के लिए थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लिया जाएगा। यह माना है, कहते हैं वलमा अना फीही, और इल्लत इसके अंदर वो ये है कि इल्हाक जरर इल अदना, कि इसमें मामूली नुकसान का मिलाना है, लिदफ इल आला, आला नुकसान को दूर करने के लिए, और यह जायज है। वयहबिसुल इमाम अमवालहुम वला यरुद्दुहा अलैहिम वला यक्सिमुहा हत्ता यतूबू फयरुद्दुहा अलैहिम, तो इमाम इन बागियों के माल को रोक लेगा और उनको वापस नहीं देगा यहां तक कि वो तौबा कर लें। जब वो तौबा कर लेंगे फिर इमाम वो माल उनको उनके माल उन्हें दे देगा। तो कहते हैं वयहबिसुल इमाम अमवालहुम, और इमाम उनके मालों को रोक लेगा, वला यरुद्दुहा अलैहिम, और वो माल उनको वापस नहीं करेगा, वला यक्सिमुहा, और उसको लड़ने वालों में तकसीम भी नहीं करेगा, हत्ता यतूबू, यहां तक कि वो बागी तौबा कर लें, फयरुद्दुहा अलैहिम, तो फिर इमाम वो माल उनको वापस कर देगा। अब भाई यहां इन्होंने दो बातें जिक्र की, एक तो ये कि इमाम तकसीम नहीं करेगा उस माल को, तो उसकी वजह बतलाएंगे कि भाई हमने बतलाया था कि ये मुसलमानों का माल है और ये कोई माल गनीमत नहीं है, और बाकी इमाम इनके माल को रोक लेगा। क्यों रोकेगा? कहते हैं इनकी कुव्वत और ताकत खत्म करने के लिए, इनकी कुव्वत और ताकत खत्म करने के लिए। तो कहते हैं अम्मा अदमुल किस्मति फलीमा बैयन्नाहू, तो इमाम का इस माल को तकसीम न करना वो उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, एक तो ये मुसलमानों का माल है और दूसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल आ गया इस बारे में। वह अम्मल हब्सु, और बाकी इमाम का इस माल को रोकना, कहते हैं फली दफ़ शर्रहिम, उनके शर को दूर करने के लिए, बिकसरी शौकतिहिम, इनकी कुव्वत को तोड़कर, कसर का माना तोड़ना, शौकत कहते हैं कुव्वत को, कहते हैं वह अम्मल हब्सू, और बाकी इनके माल को रोकना, फली दफ़ शर रहिम बिकसरी शौकतिहिम, तो इनके शर को दफा करने के लिए इनकी कुव्वत को तोड़ते हुए, वलिहादा यहबिसुहा अनहुम, और इसीलिए इमाम इस माल को इनसे रोक लेगा ताकि इनकी कुव्वत टूट जाए, जब इनकी कुव्वत टूट जाएगी तो इनका शर दफा हो जाएगा। वह इनका नला यहताजु इलैहा, अगरचे इमाम को उसकी हाजत ना हो, भाई इमाम ने बागियों का माल रोक लिया, अगरचे इमाम को हाजत और जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी रोक लेगा ताकि उनकी ताकत टूट जाए और फिर जब वो तौबा कर लें तो फिर उनका माल उनको वापस कर दे। तो कहते हैं वलिहादा यहबिसुहा अनहुम व इन काना ला यहताजु इलैहा, और इसीलिए इमाम उनके माल को उनसे रोक लेगा अगरचे इमाम को उसकी हाजत न हो, इल्ला अन्नहु यबीउल कुरा, मगर यह कि इमाम घोड़े और ऊंट वगैरह बेच देगा, लिअन्न हब्सस समनी अनजरु व ऐसरु, इसलिए क्योंकि समन को रोकना, अनजरु इसमें ज्यादा रियायत है, व ऐसरु और यह ज्यादा आसान है। भाई अगर उनके जानवर इमाम रखेगा फिर तो उन जानवरों की खिदमत के लिए आदमी भी मुकर्रर करने पड़ेंगे और उन पर खर्चा भी करना पड़ेगा, चारा वगैरह उनको लाकर देना पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय अगर उन जानवरों को बेच दिया जाए और उनके समन इमाम उनके लिए संभाल कर रख ले तो इसके अंदर आसानी भी है और नीज मालिकों पर भी शफकत है, वो बागियों पर भी शफकत है। वजह यह क्योंकि अगर जानवर को रखेंगे तो जानवर तो हलाक भी हो सकता है किसी वक्त, लेकिन जब पैसे महफूज कर लिए अब हलाकत का खतरा भी खत्म हो गया। तो कहते हैं लिअन्न हब्सस समनी, इसलिए क्योंकि समन को रोकना, अनजरु इसमें मालिक पर ज्यादा शफकत है कि वो जानवर की हलाकत का खतरा अब ना रहा, वह ऐसरु और यह ज्यादा आसान है, यानी इसमें खिदमत वगैरह की हाजत नहीं। तो कहते हैं लिअन्न हब्सस समनी अनजर व ऐसर, और इसलिए क्योंकि समन को रोकना इसके अंदर ज्यादा शफकत है और ज्यादा आसानी है। व अमर्रद बाद तौबती, और बाकी भाई इनकी तौबा के बाद इमाम इनको वापस दे देगा, उसकी क्या वजह है? कहते हैं वह अमर्रद बाद तौबती, और इनकी तौबा के बाद वापस करना, फल इंदिफा जरूरती, जरूरत के दूर हो जाने की वजह से कि अब इसको रोकने की जरूरत दूर हो गई। तो कहते हैं फल इंदिफा जरूरत, जरूरत के दूर हो जाने की वजह से, वलस्तिगना मफीहा, और इस माल के अंदर गनीमत बनाना भी नहीं है, तो इसको गनीमत तो नहीं बनाया जा सकता, तो यह उनको वापस कर दिया जाएगा क्योंकि शर दूर हो गया। काला वमा जबाहु अहलुल बगी मिनल बिला दिल्लती गलबू अलैहा मिनल खराज वल उश्री लम याखुदहुल इमाम सानिया। भाई बागियों ने किसी इलाके पर कब्जा कर लिया था और वहां इन्होंने उन लोगों से उशर और खराज भी वसूल कर लिया, और फिर इमाम ने बागियों से जंग की, उनको शिकस्त दी और इमाम ने दोबारा इस इलाके को फतह कर लिया। तो क्या अब इन लोगों से उशर और खराज दोबारा लिया जाएगा? कहते हैं नहीं, इमाम इनसे दोबारा उशर और खराज नहीं ले सकता, क्योंकि इमाम जो इनसे उशर और खराज लेता था वो इनकी हिफाजत की वजह से लेता था, और इमाम जब इनकी हिफाजत ना कर सका तो अब उशर और खराज नहीं ले सकता। हां, अगले आने वाले साल में अब वो इमाम की हिफाजत में है तो उसमें फिर इमाम उशर और खराज लेगा। भाई कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा जबाहु अहलुल बग़्य मिनल बिलादिल्लती गलबू अलैहा मिनल खराज वल उशरी। जबा यजबू जबवन और जबा यजबी जबयन, ये वावी भी है और याई भी है, इसका माना है जमा करना और वसूल करना। कहते हैं वमा जबाहु अहलुल बग़्य, और वो माल जो बागियों ने वसूल किया, मिनल बिलादिल्लती गलबू अलैहा, उन शहरों से जिन पर वो गालिब हो गए थे, मिनल खराज वल उशरी, यानी कि खराज और उशर, लम याखुज़हुल इमाम उस्सानियन, तो इमाम उसको दोबारा नहीं लेगा, जब इमाम कब्जा कर ले तो दोबारा नहीं लेगा, लिअन्ना विलायतल अख्ज़ लहू, इसलिए क्योंकि इमाम को ये चीजें लेने की जो विलायत है, बेअतबारिल हिमायती, वह हिफाजत करने के एतबार से है, वलम यहमिहिम, और हाल यह है कि इमाम ने तो इनकी हिफाजत नहीं की, फइन कानू सरफूहु फी हकीही अज्ज़ा अमन उखिज़ा मिन्हु लिवुसूलिल हकी इला मुस्तहिकीही। भाई यहां से यह बतला रहे हैं कि बागियों ने जिस इलाके पर कब्जा कर लिया था और वहां लोगों से उन्होंने खराज और उशर वसूल कर लिया था, इमाम तो दोबारा वह उशर और खराज वसूल नहीं कर सकता, लेकिन क्या यह उशर और खराज अदा हुआ या नहीं अदा हुआ? तो आपको बतलाएंगे कि अगर बागियों ने इस उशर और खराज को अपने मसरफ पर खर्च किया है, यानी जहां शरीयत ने लगाने का हुक्म दिया है वहीं पर उन्होंने लगाया है, फिर तो अदा हो गया, लेकिन अगर बागियों ने इस उशर और खराज को उसके मसरफ पर नहीं लगाया तो फिर उन लोगों से खलीफा तो दोबारा वसूल नहीं कर सकता, लेकिन दयानतन उन लोगों पर लाजिम है कि वो उस उशर और खराज को दोबारा अदा करें, यानी ये उनका और अल्लाह का मामला है, उनको फतवा ये दिया जाएगा कि तुम्हें ये खराज और उशर दोबारा अदा करना चाहिए। भाई कहते हैं फइन कानू सरफूहु फी हकीही, अगर उन बागियों ने उस माल को खर्च कर लिया, फी हकीही उसके हक में ही, यानी जहां शरीयत ने लगाने का हुक्म दिया है वहीं पर उन्होंने माल लगाया, तो अज़ा मन उखिज़ा मिन्हु, तो ये काफी है उस शख्स के लिए जिससे ये माल लिया गया था, लिवसूल हक इला मुस्तहिकीही, इस वजह से कि हक उसके मुस्तहिक को पहुंच गया, व इलम यकूनू सरफूहु फी हकीही, और अगर उन बागियों ने इस माल को उसके हक में खर्च नहीं किया, फाला अहली ही, तो उस माल को अदा करने वालों पर वाजिब है, फीमा बैनहुम व बैन अल्लाह ताला, ये उनका और अल्लाह के दरमियान का मामला है, अन युईदू ज़ालिका, कि वो इसका इआदा करें, वो इसको फिर लौटा लें, यानी फिर दोबारा अदा करें, अलबत्ता ये उनका और अल्लाह का मामला है, क़ज़ाअन तो उनको यह हुक्म नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता दयानतन उनको यह फतवा दिया जाएगा। तो कहते हैं उन पर लाजिम है कि उसको दोबारा लौटा दें, लिअन्नहु लम यसिल इला मुस्तहिकीही, इसलिए क्योंकि वो माल उसके मुस्तहिक को नहीं पहुंचा। खराज के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसे मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा, जैसे सरहदों को मजबूत किया जाएगा, या इसी तरह ममलिकत के जो इंतजामी उमूर सर अंजाम देने वाले हैं उनको तनख्वाहें वगैरह इसमें से अदा की जाएंगी, तवज्जो है। और उशर आप जानते हैं कि उशर जो है इसके मुस्तहिक जो है वो फुकारा हैं, ये फुकारा और गरीबों पर खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं दयानतन लोगों को वो उशर और खराज दोबारा देना चाहिए, लिअन्नहु लम यसिल इला मुस्तहिकीही, इसलिए क्योंकि वो माल उसके मुस्तहिक को नहीं पहुंचा। आगे देखिए काल अल अब्दुज़ज़ईफ, इस अब्द ज़ईफ से मुराद साहिब हिदाया हैं, قال العبد الضعيف رحمه الله تعالى, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, قالوا के फुकहा फरमाते हैं, لا إعادة عليهم في الخراج, भाई ऊपर मतन में तो आया, अगर उशर और खराज इन बागियों ने अपने मसरफ पर नहीं लगाया तो फिर इन लोगों पर लाजिम है कि दोबारा अदा करें। आप यहां से साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि हमारे फुकहा फरमाते हैं कि जो खराज है, अगर बागियों ने इस खराज को अपने ऊपर खर्च कर लिया तो फिर इसमें इआदा नहीं किया जाएगा। वजह यह कि खराज के मसरफों में से एक मसरफ यह है कि इसके जरिए सरहदों को मजबूत किया जाता है, सरहदों को बंद किया जाता है, और सरहदों को बंद करने का क्या माना है कि वहां पर जो लश्कर मुसलमानों के मौजूद हैं, जो लड़ने वाले लोग मौजूद हैं, उनके ऊपर इसको खर्च किया जाएगा। और ये बागी जो हैं ये भी मुसलमान ही हैं और ये लड़ने वाले हैं, लिहाजा ये भी इस खराज का मसरफ हैं। जब ये खराज का मसरफ हैं और इन्होंने खराज को अपने ऊपर खर्च कर लिया है तो खराज अदा हो गया, खराज अपने मुस्तहिक को पहुंच गया। भाई अगरचे इस वक्त बागी मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन हैं तो मुसलमान और हैं तो लड़ने वालों में से, लिहाजा खराज उसके मुस्तहिक को पहुंच गया भाई। और इसी तरह उशर जो है, अगर वो बागियों ने अपने ऊपर खर्च कर लिया तो उशर के मुस्तहकीन तो फुकारा हैं, तो अगर बागी भी फुकारा हैं तो उशर भी अदा हो गया, दोबारा अदा करने की जरूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं कालू फुकाहा फरमाते हैं ला इआदता अलैहिम फिल खराज, कि इन लोगों पर खराज के अंदर इआदा नहीं है, खराज दोबारा अदा करने की जरूरत नहीं है। लिअन्नहुम मुकातिलतुन, इसलिए क्योंकि ये बागी जो हैं ये भी लड़ने वाले हैं। फकानू मसारिफा, तो लिहाजा ये भी खराज का मसरफ है। व इन कानू अग्निया, अगरचे ये मालदार हों, क्योंकि खराज का मसरफ लड़ने वाले हैं, उसमें यह नहीं देखा जाता कि वो मालदार है या मालदार नहीं है, तो खराज तो अदा हो गया। वह फिल उशरी, और उशर के बारे में वो फुकाहा फरमाते हैं इनकानू फुकारा आ, अगर ये लड़ने वाले बागी जो हैं ये फकीर हैं, फकजालिक, तो भी हुक्म इसी तरह है, यानी इन लोगों को उशर लौटाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि उशर उसके मुस्तहिक को यानी फकीर को पहुंच चुका है भाई। तो कहते हैं वफील उशरी, और उशर में फुकाहा फरमाते हैं कि इन कानू फुकारा अकाजालिक, कि अगर ये बागी फुकारा है तब भी हुक्म इसी तरह है, यानी इआदे की जरूरत नहीं। ले अन्नहु हकुल फुकारा, इसलिए क्योंकि उशर जो है वह फुकारा का हक है। वकद बैन्ना हुफिज जकाती, और तहकीक ये बात हम किताबु जकात में बयान कर चुके हैं कि जिस तरह जकात फुकरा का हक है इसी तरह उशर भी फुकरा का हक है। वफिल मुस्तकबिली या खुदहुल इमामु, और मुस्तकबिल में यह उशर और खराज इमाम लेगा। लिअन्नहु यहमी हिम फीही, इसलिए क्योंकि वो इनकी हिफाजत करेगा इसमें, यानी मुस्तकबिल में। लिजुहूरी विलायती ही, उसकी विलायत के जाहिर हो जाने की वजह से कि इमाम ने बागियों को शिकस्त दे दी है और इस इलाके को फतह कर लिया है, तो अब हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम की बन गई, तो वो हिफाजत करेगा और हिफाजत की वजह से ही उसको विलायत होती है उशर और खराज वसूल करने की भाई। तो कहते हैं वफील मुस्तकबिली या खुदहुल इमामू, और मुस्तकबिल में यानी आने वाले साल में उशर और खराज इमाम लेगा। लिअन्नहु यहमी हिम फीही, इसलिए क्योंकि इसमें इमाम उनकी हिफाजत करेगा। लिजुहूरी विलायती ही, इमाम की विलायत के जाहिर हो जाने की वजह से। आगे देखिए वमन कतला रजुलन वहुमा मिन अस्करी अहलिल बागी, भाई यहां से अब जिनायत बयान कर रहे हैं। अगर एक बागी दूसरे बागी को कत्ल कर देता है और बाद में इन बागियों को शिकस्त हो गई और इमाम ने उस सारे इलाके को फतह कर लिया, तो एक बागी ने दूसरे बागी को कत्ल किया था, तो क्या इसकी वजह से किसास या दियत आएगी? कहते हैं नहीं, इमाम को इन पर विलायत हासिल नहीं थी, लिहाजा किसास या दियत नहीं आएगी। किसास या दियत नहीं आएगी। हां, कत्ल का अजीम गुनाह जरूर होगा क्योंकि उसने एक मुसलमान को कत्ल किया है। तो कहते हैं वमन कतला रजुलन, और जिस शख्स ने किसी आदमी को कत्ल कर दिया। वहुमा मिन अस्करी अहलिल बागी, इस हाल में कि दोनों जो हैं बागियों के लश्कर में से हैं, यानी कातिल भी और मकतूल भी। सुम्मा ज़ुहिरा अलैहिम, फिर इन पर गलबा पा लिया गया। फलैसा अलैहिम शैउन, तो उन पर कोई चीज नहीं है, यानी न किसास है और न दियत है। लिअन्नहु ला विलायत लिल इमाम अल अदल हीन अल कत्ल, इसलिए क्योंकि कत्ल के वक्त इमाम अदल को जो है विलायत हासिल नहीं थी, कत्ल के वक्त आदिल इमाम को विलायत हासिल नहीं थी। फलम यनाकिद मूजिबन, तो यह कत्ल मुनाकिद नहीं हुआ, मूजिबन के वाजिब करने वाला हो, यानी जमान को, तो यह कत्ल जमान को वाजिब करने वाला होकर मुनाकिद नहीं हुआ, इसकी वजह से जमान नहीं आएगा। तो कहते हैं फलम यन आकिद मूजिबन, तो ये कत्ल जो है जमान को वाजिब करने वाला होकर मुनाकिद नहीं हुआ। कल कत्ल फी दारुल हर्ब, जैसे कि दारुल हर्ब में कत्ल है, आप पढ़ चुके हैं दारुल हर्ब में कोई शख्स मुसलमान हो जाए और कोई दूसरा मुसलमान उसको कत्ल कर दे, तो ना वहां किसास आएगा और ना दियत आएगी, क्योंकि इमाम को विलायत हासिल नहीं है भाई। तो कहते हैं कल कत्ल फी दारुल हर्बी, जैसे कि दारुल हर्ब में कत्ल है, वह इन गलबू अला मिस्रीन, और अगर बागी किसी शहर पर गालिब हो गए। भाई इधर देखिए, बागियों ने एक शहर पर कब्जा कर लिया और फिर इस शहर वालों में से एक आम मुसलमान ने दूसरे आम मुसलमान को कत्ल कर दिया, यानी वो बागियों के साथ नहीं है लेकिन उसी शहर वालों में से एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दिया, और बाद में इन बागियों को शिकस्त हो गई और इमाम ने उस सारे इलाके को फतह कर लिया। तो कहते हैं इस सूरत में अगर बागियों ने वहां पूरा कब्जा करके अपने अहकाम भी जारी कर दिए थे, फिर तो इस सूरत के अंदर यहां इमाम को विलायत हासिल नहीं, लिहाजा इस कत्ल की वजह से भी न किसास आएगा और न दियत आएगी। हां, कत्ल का अजीम गुना जरूर होगा भाई, लेकिन अगर बागी अभी पूरी तरह वहां मजबूत नहीं हुए, यानी कब्जा तो कर लिया है लेकिन अभी अपने अहकाम उन्होंने जारी नहीं किए और उससे पहले ही इमाम ने उन पर हमला कर दिया, तो इस सूरत में जब बागियों ने अपने अहकाम वहां जारी नहीं किए तो गोया इमाम की विलायत अभी भी वहां मौजूद थी। जब विलायत मौजूद थी तो अब उस कत्ल की वजह से किसास या दियत आएगी भाई। तो कहते हैं वह इन गलबू अला मिस्रिन, और अगर बागी किसी शहर पर गालिब आ गए, फकत अला रजुलुम मिन अहलिल मिस्री, तो शहर वालों में से एक आदमी ने कत्ल कर दिया, रजुलम मिन अहलिल मिस्री, शहर वालों में से ही एक आदमी को, शहर वालों में से एक आदमी ने दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया, आमदन जान बूझ कर, सुम मजुहिरा अलल मिस्री, फिर उस शहर पर गलबा पा लिया गया, फइन नहू युक्तसु मिन्हू, तो यहां इस कातिल से किसास लिया जाएगा, व तावीलुहू, तावील इसकी यह है, तावील बयान कर रहे हैं, कहते हैं भाई आपने तो हमें बताया कि बागियों में से कोई एक दूसरे को कत्ल कर दे तो वहां इमाम को विलायत नहीं होती, तो वहां किसास और दियत नहीं आते, तो यहां पर भी तो बागियों का कब्जा था जिसमें एक आदमी ने दूसरे आदमी को कत्ल किया है, तो यहां भी दियत या किसास नहीं आना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहां किसास लिया जाएगा। तो कहते हैं ये तावील इस मसले की ये है कि ये उस सूरत में है जब बागियों ने अभी अपने अहकाम जारी न किए हों, जब बागियों ने अभी तक अपने अहकाम जारी नहीं किए तो गोया अभी भी इमाम ही को विलायत हासिल है भाई। तो कहते हैं वह तावील हूं, और तावील इसकी यह है कि इदा लम यजरी अला अहलिही अहकामुहुम, कि जब जारी नहीं हुए थे उन शहर वालों पर बागियों के अहकाम, जब अभी जारी नहीं हुए थे, वह उज़ईजू कबल ज़ालिक, अज़अजा युज़ईजू, इज़आज का माना है परेशान करना, बेआराम करना, यानी बागियों ने अभी अपने अहकाम जारी नहीं किए थे उससे पहले ही इमाम ने उनको परेशान कर दिया, यानी उनसे लड़ाई शुरू कर दी। तो कहते हैं वह उज़ईजू कबल ज़ालिक, और उससे पहले ही उन बागियों को परेशान कर दिया गया, वफी ज़ालिका लम तनक़ति विलायतुल इमामी, और इस सूरत के अंदर इमाम की विलायत मुनक़ति नहीं हुई, फयजिबुल क़िसास, तो क़िसास वाजिब होगा, व इज़ा क़तला रजुलुम मिन अहलिल अदली बागियन, भाई सूरत यह है कि मुसलमानों और बागियों के दरमियान लड़ाई हुई, तो याद रखो ये जो इमाम की तरफ से लड़ रहे हैं ये बागियों को कत्ल करते हैं या उनके माल को तलफ करते हैं तो इन पर कोई जमान नहीं आएगा, ना कत्ल का जमान आएगा क्योंकि वो ना हक कत्ल नहीं कर रहा, और नीज माल का जमान भी नहीं आएगा। इसी तरह बागियों की तरफ से अगर कोई मुसलमानों को कत्ल करता है या उनके माल को नुकसान पहुंचाता है और बाद में फिर वो तौबा कर लेते हैं, मसलन एक आदमी है बागियों की तरफ से लड़ते हुए उसने बाद मुसलमानों को कत्ल किया है या उनके माल को नुकसान पहुंचाया है, तो क्या इससे जान या माल का जमान लिया जाएगा? तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, हमारे नजदीक बागी पर भी ना जान का जमान आएगा और ना माल का जमान आएगा। तो यह दुनियावी हुक्म है, हां आखिरत के एतबार से वह गुनाहगार है, उसने कत्ल का अजीम जुर्म किया है भाई। तो कहते हैं वईदा कतलारा जुलुम मिन अहले अदली बागियान, और जब कोई आदमी जो अहले अदल में से है वो किसी बागी को कत्ल कर दे, फइन नहू यरिसुहू, तो ये शख्स उसका वारिस बनेगा। भाई आप जानते हैं वारिस अपने मूरिस को कत्ल कर दे तो वो वरासत से महरूम हो जाता है, बेटे ने अगर अपने बाप को कत्ल कर दिया तो बेटा वरासत से महरूम होगा, उसे कोई माल नहीं मिलेगा। वजह यह कि दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद इसने इसीलिए बाप को कत्ल किया ताकि जल्दी से मुझे माले वरासत मिल जाए, लिहाजा शरीयत ने उसको पूरे तौर पर ही महरूम कर दिया। भाई अब सूरत यह कि मसलन बाप जो है वो बागियों की तरफ से है और बेटा इमाम की तरफ से लड़ रहा है, तो बेटा अपने बाप को कत्ल कर दे, या बाप जो बागी है वो इमाम की तरफ से लड़ने वाले अपने बेटे को कत्ल कर दे, तो क्या ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे या नहीं? जी। बाद में तौबा कर लेते हैं तो क्या ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि अगर इमाम की तरफ से लड़ने वाले ने अपने मूरिस को कत्ल कर दिया तो यह वारिस बनेगा, क्योंकि यह ना हक कत्ल नहीं कर रहा, यह ऐन हक के मुताबिक कत्ल कर रहा है उसको, क्योंकि वो बागी था, वो मूरिस, वो जो मूरिस था वो बागी था, लिहाजा उसको कत्ल कर रहा है, तो यह हक के साथ कत्ल है, लिहाजा इसकी वजह से वो वरासत से महरूम नहीं होगा, यह वारिस बनेगा। जबकि अगर बागियों की तरफ से एक आदमी ने अपने मूरिस को कत्ल कर दिया जो इमाम की तरफ था, मूरिस किसकी तरफ था? इमाम की तरफ। भाई आपने पढ़ा है कि जैसे बेटा बाप का वारिस बनता है, इसी तरह अगर बेटा मर जाए तो बाप भी उसका वारिस बनता है। भाई तो अगर बागियों की तरफ से लड़ने वाले बाप ने इमाम की तरफ से लड़ने वाले अपने बेटे को कत्ल कर दिया तो क्या यह बाप वारिस बनेगा या नहीं जिसने अपने मूरिस को कत्ल किया है? तो आपको बतलाएंगे कि अगर बाद में बाप तौबा कर लेता है तो अगर उसका वही मजहब और अकीदा है जो पहले था, वही मजहब है, मैंने आपको बताया बागी किसे कहते हैं, बागी उसे कहते हैं कि जो कहते हैं हम हक पर हैं, कुरान और हदीस में वो तावील करते हैं कि हम हक पर हैं तुम ना हक हो, जैसे खवारिश करते थे भाई। तो मैंने आपको बताया कि अगर वो बागी ये कहता है कि मैं पहले भी हक पर था, मैं आज भी हक पर हूं, मेरी बात सही थी, तो इस सूरत में इस बागी के ख्याल में इसने भी कत्ल जो किया वो हक के मुताबिक ही किया है, उसके ख्याल में मैंने कोई नाहक कत्ल नहीं किया, लिहाजा ये वारिस बनेगा। और अगर बागी जो है उसने तौबा कर लिया है और बाद में एतराफ करता है कि वाकई मैं हक पर नहीं था, मैंने नाहक ही अपने मूरिस को कत्ल किया, तो फिर इस सूरत में याद रखो ये वारिस नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? देखिए साहिब हिदायत और वाज़े अल्फाज में बयान फरमाएंगे, कहते हैं वो इदा कतला रजुल मिन अहलिल अदल बागियान, और जब अहले अदल में से एक आदमी ने किसी बागी को कत्ल कर दिया, फइन्नहु यरिसुहु, तो ये अहले अदल में से जो आदमी है ये उस मक्तूल बागी का वारिस बनेगा, फइन कतलहुल बागी, और अगर बागी ने इसको कत्ल किया, बराक सूरत भाई, बागी ने अपने मूरिस को कत्ल कर दिया जो किसकी तरफ से लड़ने आया था, इमाम की तरफ से, कहते हैं फइन कतलहुल बागी, और अगर बागी ने अहले अदल में से उस आदमी अपने मूरिस को कत्ल कर दिया, वकाला, और वो कहता है कद कुंतु अला हक्किन, बाद में तौबा के बाद कहता है कद कुंतु अला हक्किन के मैं उस वक्त भी हक पर था, व अनल आना अला हक्किन, और अब भी मैं हक पर हूं, तो वरिसहू, तो इस सूरत में यह वारिस बनेगा, वारिस बनेगा। वह इन काला, और अगर वो बागी जिसने तौबा कर ली है वो कहता है कतल तो हूं, मैंने उसको कत्ल किया, वह अना आलमु अन्नी अलल बातिली, और मैं जानता हूं कि मैं बातिल पर था, मैं बातिल पर था, अब मुझे हक का पता चला है, तो लम यरिसु, तो इस सूरत में ये वारिस नहीं बनेगा। वहां जा इंदा अबी हनीफा व मोहम्मद इन रहमहुमल्ला, और ये तरफैन रहमहुमल्ला के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाहु ताला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं ला यरिसुल बागी फिल वजहैनी, कि बागी दोनों सूरतों में वारिस नहीं बनेगा, चाहे वो कहे कि मैं हक पर था, चाहे वो कहे मैं बातिल पर था, दोनों सूरतों में वो वारिस नहीं बनेगा। वह हुआ कौल शाफी रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफी रहमहुल्ला का भी। वह असलुहू, और इस इख्तिलाफ की असल यह है कि अन्नल आदिला इदा अतलफा नफसल बागी औ मालहू, कि आदिल जब बागी की जान या माल को तलफ कर दे, उसको हलाक कर दे, ला यज़मनु, तो वह जामिन नहीं होगा, ना तो बागी की जान का जमान आएगा और ना बागी के माल का जमान आएगा। वला यसमु, और गुनाहगार भी नहीं होगा, क्योंकि ये उसने हक के साथ कत्ल किया है। तो कहते हैं वला यअसमु और गुनाहगार भी नहीं होगा, लिअन्नहु मामूरुन बिकितालिहिम, इसलिए क्योंकि ये तो मामूर था उनके किताल पर, यानी इसको तो हुक्म दिया गया है उनके किताल का कि फितने को खत्म किया जाए। तो कहते हैं लिअन्नहु मामूरुन बिकितालिहिम, इसलिए क्योंकि ये आदिल जो है इसको तो उनके किताल का हुक्म दिया गया है, दफअन लिशर्रिहिम, उनके शर को दूर करने के लिए, वल बागी इज़ा क़तलल आदिला, और बागी जब आदिल आदमी को कत्ल कर दे, लायजिबु ज़मानु इंदना, तो जमान नहीं आएगा हमारे नजदीक, वयअसमु और गुनाहगार होगा, गुनाह होगा भाई। وقال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अपने पुराने कौल में फरमाते हैं कि इन्नहु यजिबु, के जमान वाजिब होगा, बागी ने अगर मुसलमान को कत्ल किया है तो जमान आएगा, तो वो फरमाते हैं इन्नहु यजिबु, के जमान वाजिब होगा उस बागी पर, वाला हादल खिलाफी इदाता बल मुर्तद, और इसी इख्तिलाफ पर है जब मुर्तद तौबा कर ले, वकद अतलफा नफसन औ माला, और तहकीक उसने नफ्स या माल को तलफ किया है। सूरत ये, एक मुसलमान यहां से मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला गया, और फिर दारुल हर्ब वालों की तरफ से मुसलमानों से उसने लड़ाई भी की, और इस लड़ाई के अंदर उस मुर्तद ने मुसलमानों को जानी नुकसान भी पहुंचाया और माली भी, कुछ मुसलमानों को भी कत्ल किया और उनका माल भी हलाक किया, और फिर बाद में इस मुर्तद ने तौबा कर ली, तो क्या इस मुर्तद पर जमान आएगा? हम कहते हैं नहीं, इस मुर्तद पर कोई जमान नहीं आएगा, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, इस मुर्तद पर भी जमान आएगा, जैसे बागी पर जमान आता है इस मुर्तद पर भी जमान आएगा। तो कहते हैं वाला हादल खिलाफी, और इसी इख्तिलाफ पर है, इदा ताबल मुर्तद, जब एक मुर्तद तौबा कर ले, वकद अतलफा नफसन औ मालन, इस हाल में कि उसने जान या माल को हलाक किया है, लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहू अतलफा मालम मासूमन औ कतल नफसन मासूमतन, भाई बात चल रही है कि बागी पर जमान आएगा या नहीं, दरमियान में सिर्फ बतलाया कि मुर्तद के मसले में भी इसी तरह इख्तिलाफ है, तो उस बागी के मसले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र कर रहे हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बागी पर जान और माल का जमान आएगा, बागी ने इमाम की तरफ से लड़ने वाले किसी मुसलमान को कत्ल किया है या उसके माल को हलाक किया है तो बागी पर जमान आएगा, वजह यह कि मुसलमान की जान और माल महफूज है, तो इस शख्स ने, इस बागी ने एक मासूम और महफूज जान को कत्ल किया है या एक मासूम और महफूज माल को हलाक किया है तो इस पर जमान आएगा। लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहू अतलफा मालम मासूमन, कि इस बागी ने महफूज माल को हलाक किया है, औ कतल नफ्सन मासूमतन, या इसने एक मासूम जान को कत्ल किया है, फयजिबु जमानु, तो जमान वाजिब होगा, एतबारम बिमा कबल अल मनाती, कयास करते हुए कुव्वत से पहले पर, मैंने आपको बतलाया था मना का माना कुव्वत भी और मना के माने लश्कर भी, भाई देखिए बागियों के लिए कुव्वत चाहिए लड़ने के लिए, दो चार आदमी तो लड़ाई नहीं कर सकते इमाम के साथ भाई, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे बागियों के कुव्वत पकड़ने से पहले अगर ये बागी किसी आम मुसलमान को कत्ल करता यानी जानी नुकसान पहुंचाता या माली नुकसान पहुंचाता तो इस शख्स पर जमान आना था, तो जैसे कुव्वत पकड़ने से पहले इस पर जमान आना था तो कुव्वत पकड़ने के बाद इस पर जमान आएगा। तो ये माना है एतबारम बिमा कबल अल मनाती, कियास करते हुए कुव्वत से पहले पर, वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना इजमाउ सहाबती रजी अल्लाह तआला अन्हुम रवाहु ज़ुहरी रहिमहुल्लाह, इमाम ज़ुहरी भाई, इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहिमहुल्लाह भाई, ये जलीलुल कदर ताबई गुजरे हैं और बहुत अजीम मुहद्दिस हैं भाई, और इनकी वफात हुई है 123 या 124 हिजरी में भाई, तो ये जलीलुल कदर ताबई हैं भाई, वो सहाबा के इजमा को नकल फरमाते हैं, चुनाचे कहते हैं खलीफा ने इनकी तरफ एक मसला लिखकर भेजा, इनसे पूछा कि एक औरत थी शादीशुदा थी और फिर वो अपने खावंद और कबीले को छोड़कर खवारिज से जा मिली और कहती थी मेरे खावंद और कबीले वाले सब मुशरिक हो गए हैं, और फिर वहां इसने खवारिज में से किसी से निकाह कर लिया और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर वो तौबा करके वापस आ गई, तो खलीफा ने इमाम ज़ुहरी को खत लिखा कि अब आप हमें बताइए इस मसले में क्या किया जाए, तो इमाम ज़ुहरी फरमाने लगे कि हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा जिनमें से बहुत से बदर के अंदर भी हाजिर थे, उन सहाबा की राय इस बात पर जमा हुई थी कि अगर कोई शख्स कुरान में तावील के जरिए किसी औरत को हलाल समझता है तो उस पर हद जारी नहीं की जा सकती, और इसी तरह अगर कोई कुरान में तावील के जरिए किसी मुसलमान के कत्ल को जायज समझता है तो उससे भी किसास नहीं लिया जा सकता। और मेरी राय यह है, मेरी राय इस मसले के अंदर यह है कि इस औरत को उसके पहले खावंद ही को दे दिया जाए, और अगर इस औरत पर कोई जिना का इल्जाम लगाता है तो उस पर हद जारी की जाए। यानी ये जो दूसरे आदमी से जाकर इसने निकाह कर लिया था और कोई इस औरत को कहता है कि तुम तो जिना करके आई हो, तो इस सूरत में उस आदमी पर हद जारी की जाएगी तोहमत लगाने वाले पर। वजह यह कि इस औरत ने कुरान से दलील पकड़ी थी, भाई कुरान में तावील की थी, अगरचे तावील फासिद थी लेकिन इसकी तावील के मुताबिक इसका खामंद और कबीले वाले मुश्रिक हो गए थे और इसके एतकाद के मुताबिक इसका उनसे निकाह टूट गया था, लिहाजा इसके नजदीक आगे निकाह जायज था। भाई तो मालूम हुआ, इमाम जोहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान में फासिद तावील करके किसी मुसलमान के खून को मुबाह समझता है तो वहां किसास नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। वलाना हमारी दलील जो है इजमाउ सहाबति रजी अल्लाह ताला अन्हुम व सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का इजमा है, रवाहु जोहरी रहिमहुल्लाह ताला, जिसको इमाम जोहरी रहमतुल्लाह ने रिवायत फरमाया है। वली अन्नहु अतलफा अन तावील फासिदीन, और इसलिए क्योंकि बागी ने उस जान या माल को तलफ किया है फासिद तावील के जरिए, फासिद तावील के जरिए। भाई याद रखो, ये जो खवारिज थे ये मुसलमानों के खून को मुबाह समझते थे। वजह यह कि ये कुरान ही से दलील पकड़ते थे, अगरचे इनकी तावील फासिद थी लेकिन वो कहते थे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमन यअसि अल्लाह व रसूलहु, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे फइन्न लहू नारा जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, तो उसके लिए जहन्नम की आग है और वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। वो कहते थे मालूम हुआ जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा वो काफिर हो गया, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, चाहे सगीरा गुनाह करे चाहे कबीरा करे, हर गुनाह करने वाला काफिर है, हर गुनाह करने वाला काफिर है। तो अगरचे उनकी ये तावील फासिद है लेकिन बहरहाल वो कुरान से तावील तो करते थे। और याद रखना, आपको बतलाएंगे साहिबे हिदाया कि कुरान में तावील फासिद की जाए और उन लोगों को कुव्वत भी हासिल हो, तो तावील फासिद के साथ जब कुव्वत मिल जाएगी तो ये दफा की दलील तो बन सकती है, इस बात की दलील नहीं। तावील फासिद के साथ क्या मिल जाए? कुव्वत मिल जाए। ये बागियों को भी देखो, कुव्वत इनको मिल गई थी, लश्कर था इनका, ये बाकायदा मुसलमानों से लड़ाई कर रहे थे। तो जब भी तावील फासिद के साथ कुव्वत मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो ये दफा की दलील तो बन सकती है, इस बात की नहीं। यानी इस बात की दलील नहीं बन सकती, इसके जरिए किसी चीज को साबित नहीं किया जा सकता। हां, इसके जरिए किसी चीज को दफा किया जा सकता है, जैसे यहां पर इन बागियों को कुव्वत भी है और नीज ये कुरान में तावील भी करते हैं, तो तावील फासिद कुव्वत के साथ मिल गई, लिहाजा ये दफा की जद दलील बनेगी और इन पर जमान नहीं आएगा, जमान इनसे दफा हो, जमान इनसे दूर हो जाएगा। तो देखो, मालूम हुआ तावील फासिद के साथ जब कुव्वत मिल जाए तो ये दफा की दलील बन सकती है। भाई तो कहते हैं वली अन्नहु अतलफा अन तावील इन फासिदिन, और इसलिए क्योंकि बागी ने जो है वो तावील फासिद से तलफ किया है। भाई हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ चल रहा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक बागी पर जमान आएगा, जान का भी और माल का भी, जब इसने आम मुसलमानों के माल और जान को नुकसान पहुंचाया है, जबकि हमारे नजदीक बागी पर कोई जमान नहीं आएगा। तो हमारे नजदीक वली अन्नहु अतलफा अन तावील इन फासिदिन, इसलिए क्योंकि बागी ने इस जान और माल को तलफ किया है फासिद तावील के जरिए। वल फासिद मिनहुमुल हकम बिसहीह, और फासिद तावील जो है उसको भी मिलाया गया है सही के साथ। जैसे सही तावील के जरिए हुक्म साबित हो जाता है, यहां फासिद तावील के जरिए भी दफा साबित हो जाएगी। कहते हैं वल फासिद मिनहुमुल हकम बिसहीह, और फासिद तावील जो है उसको भी सही तावील के साथ मिलाया गया है। इदा जुम्मत इलैहिल मनातु, जब इसके साथ कुव्वत मिल जाए, जब इस फासिद तावील के साथ कुव्वत मिल जाए, फी हक दफई, भाई फासिद को सही के साथ मिलाया गया है, किस चीज में? कहते हैं फी हक दफ़ई, किसी चीज को, किसी हुक्म को दफा करने में, दूर करने में, जैसे यहां जमान को दूर करने में यह मुअस्सिर होगी। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वल फासिदु मुलहकुम बिसहीही इजा जुम्मत इलैहिल मनातु, और फासिद तावील जो है उसको भी सही तावील के साथ मिलाया गया है जब इसके साथ कुव्वत मिल जाए, फी हक दफ़ई। और किस चीज में फासिद तावील को सही के साथ मिलाया गया है? फी हक दफ़ई, दफा के हक में, यानी दफ़े जमान के हक में। कमा फी मनाति अहलिल हर्ब व तावीलिहिम, जैसे कि अहले हर्ब की कुव्वत और उनकी तावील में है। हर्बियों में से बाज लोग मुसलमान हो गए, लेकिन यही हर्बी मुसलमानों के साथ जंग कर चुके हैं और इन्होंने मुसलमानों को जानी और माली नुकसान पहुंचाया है, तो इन पर जमान नहीं आएगा। इन हर्बियों पर जमान नहीं आएगा क्योंकि इनको कुव्वत भी हासिल थी और ये हमारे साथ लड़ रहे थे, इनको कुव्वत भी हासिल थी और ये तावील भी करते थे, ये तो मुसलमानों के खून को मुबाह समझते थे उस वक्त। भाई तो कहते हैं कमाफी मनाति अहलिल हर्बी व तावीलिहिम, जैसे अहले हर्ब की कुव्वत और उनकी तावील के अंदर है कि उसमें तो बिल इत्तेफाक किसी के नजदीक भी उस मुसलमान होने वाले हर्बी पर जमान नहीं आएगा, तो यहां भी बागी पर जमान नहीं आएगा। वहादा, और ये इस वजह से लिअन्न अलहकाम लाबुद्द फीहा मिनल इल्जामी, भाई वजह ये दो शर्तें लगा दी, एक तो ये कि तावील भी हो और दूसरा कुव्वत भी हो। तावील का होना भी जरूरी, कुरान और हदीस से बाकायदा वो दलील जिक्र करते हो और नीज उनको कुव्वत भी हासिल हो। वजह यह कि अहकाम के लिए जरूरी है इल्जाम या इल्तिजाम। अल्जम युल्जिम, इल्जाम का माना है दूसरे पर हुक्म को लाजिम करना, और इल्तजम यल्तजिम का माना है अपने ऊपर हुक्म को लाजिम करना। तो जब उन लोगों के पास कुव्वत है, बागियों के पास कुव्वत है, तो इल्जाम नहीं, यानी हम उन पर अहकाम को लाजिम नहीं कर सकते। और नीज जब वो कुरान में तावील कर रहे हैं तो मालूम हुआ उन्होंने इस हुक्म का अपने ऊपर इल्तिजाम भी नहीं किया। तवज्जो है, तो ना इल्जाम है और ना इल्तिजाम है, तो लिहाजा उन पर जमान नहीं आएगा। तो कहते हैं वहादा लिअन्नल अहकाम लाबुद्द फीहा मिनल इल्जामी अव इल्तिजामी, और इसलिए क्योंकि अहकाम के अंदर जरूरी है इल्जाम या इल्तिजाम का होना। वल इल्तिजामा, और यहां इल्तिजाम नहीं है, बागियों ने अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया। क्यों? कहते हैं लिअतिकाद अल इबाहति अन तावीलिन, इसलिए क्योंकि वो इबाहत का एतिकाद रखते हैं तावील से। वो मुसलमानों के खून को मुबाह समझते हैं तावील से। तो कहते हैं वल इल्तिजामा, और यहां इल्तिजाम नहीं है लिअतिकाद अल इबाहति अन तावीलिन, इसलिए क्योंकि ये तावील के जरिए इबाहत का एतिकाद रखते हैं। वला इल्जामा, और यहां इल्जाम भी नहीं है लिअदमिल विलायति, विलायत न होने की वजह से, लिवजूदिल मनाति, कुव्वत के पाए जाने की वजह से, इनके कुव्वत और इनके लश्कर के पाए जाने की वजह से इमाम को भी इन पर विलायत नहीं है कि इन पर हुक्म को लाजिम कर सके। तो कहते हैं वला इल्जाम, और इल्जाम भी नहीं है बागी पर अहकाम का लाजिम करना भी नहीं है, लिअदमिल विलायति लिवजूदिल मनाति, इमाम की विलायत न होने की वजह से, बवजह इनके लश्कर के पाए जाने के। वल विलायतु बाकियतुन कबल अल मनाति, और विलायत जो है वो तो बाकी होती है लश्कर और कुव्वत से पहले। ये जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे जैसे जैसे बागियों के कुव्वत और लश्कर से पहले अगर इनमें से कोई किसी मुसलमान को जानी या माली नुकसान पहुंचाता था तो उस पर जमान आता था, तो लश्कर और कुव्वत मिलने के बाद भी इन पर जमान आएगा। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि इनकी कुव्वत और इनके लश्कर से पहले तो खलीफा को इन पर विलायत हासिल थी, इसलिए उस सूरत में तो जमान आएगा, लेकिन जब इनको कुव्वत हासिल हो गई और तावील भी मौजूद है तो अब इमाम को इन पर विलायत भी नहीं और इन्होंने इल्तिजाम भी नहीं किया। भाई तो कहते हैं वल विलायतु बाकियतुन कबल अल मनाअति, और बागियों की कुव्वत और लश्कर से पहले तो इमाम की विलायत बाकी है। वइंदा अदमी तावीली, और जब ये तावील नहीं करते, भाई मैंने बताया दो चीजें मिलेंगी तो फिर ही ये दफा की दलील बनेगी, एक तावील भी करते हो कुरान और हदीस दलील भी पकड़ते हों और उनको कुव्वत और लश्कर भी हासिल हो। कहते हैं वईंद अदमी तावील, और तावील न होते वक्त सबत अल इल्तिजाम, तो इल्तिजाम साबित है एतिकादन बाएतबार एतिकाद के। अगर सिर्फ कुव्वत है इनके पास लेकिन ये कुरान और हदीस में कोई तावील नहीं करते, जब तावील नहीं कर रहे मालूम अहकाम को ये अपने ऊपर लाजिम कर रहे हैं, उन अहकाम को अपने ऊपर लाजिम कर रहे हैं। तो सिर्फ लश्कर हो और तावील ना हो तो भी इन पर जमान आएगा भाई। तो कहते हैं वईंद अदमी तावीली, और तावील ना होते वक्त सबत अल इल्तिजाम एतिकादन, तो एतिकाद के एतबार से इल्तिजाम हुक्म साबित हो जाएगा। बिखिलाफ इल इस्मी, बखिलाफ गुनाह के भाई, गुना हर हाल में होगा चाहे इनको कुव्वत हो चाहे कुव्वत ना हो भाई, यानी मुसलमान को जानी या माली नुकसान दिया है इन बागियों ने तो गुना हर हाल में होगा। तवज्जो है, यानी दुनियावी सजा तो नहीं, जमान तो नहीं आएगा, किसास और दियत भी नहीं, और माल तलब किया है उसका जमान भी नहीं, लेकिन गुनाह होगा भाई। कहते हैं बेखिलाफ इस्मी, बखिलाफ गुनाह के, लिअन्नहु ला मनअत फी हक शारिई, इसलिए क्योंकि कोई कुव्वत नहीं है शारिअ के हक में, शारे के हाथ में इनकी कुव्वत का कोई एतबार नहीं है, तो गुना होगा इनको हर हाल में। इजा सबता हाजा, जब ये बात साबित हो गई, फनकूलु, तो हम कहते हैं कत्लुल आदिलिल बागिया, कि आदिल आदमी का बागी को कत्ल करना, कत्लुम बिहक्किन, ये कत्ल बहक है, ये हक के साथ कत्ल है। फला यमनउल इरसा, लिहाजा ये वारिस होने से मानिअ नहीं, लिहाजा आदिल बागी को कत्ल करे फिर भी वारिस बनेगा। और बाकी अगर बागी अपने मुरीस को कत्ल करे, तो हमने बताया कि अगर वो बाद में भी कहता है कि मैं पहले भी हक पर था आज भी हक पर हूं, तो फिर तो वारिस बनेगा, और अगर कहता है कि मैं पहले बातिल पर था जब मैंने कत्ल किया था, तो अब वारिस नहीं बनेगा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों सूरतों में बागी जो है वारिस नहीं बनेगा, चाहे वो ये कहे मैं पहले भी हक पर था और अब भी हक पर हूं, और चाहे वो कहे मैं पहले बातिल पर था, दोनों सूरतों में इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं हिरमाने मीरास होगा, ये अपने उस मुरीस का वारिस नहीं बनेगा जिसे इसने कत्ल किया था। तो कहते हैं वली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला फी कत्ल बागिल आदिला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील बागी के आदिल को कत्ल करने की सूरत में, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न तावील अल्फासिदा इन्नमा युअतबरु फी हक़ दफ़ई। अच्छा भाई, मैंने आपको बतलाया था कि तावील फासिद दफा की दलील तो बन सकती है, इस बात की दलील नहीं बन सकती। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये बागी, इसने मुसलमान को कत्ल किया है, अपने मुरीस को कत्ल किया है, और ये तावील फासिद करता है, लेकिन तावील फासिद दफा की दलील तो बन सकती है, इस बात की नहीं। और यहां इस बात इर्स का मसला है कि वरासत साबित करनी है भाई, तो तावील बातिल वो दफा की दलील तो बन सकती है, इस बात की दलील नहीं, यानी इस बात वरासत की दलील नहीं बन सकती, लिहाजा ये वारिस नहीं बनेगा। तो कहते हैं इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न तावील अल फासिदा इन्नमा युअतबर फी हक दफ़ई, कि तावील फासिद जो है वो दफा के हक में तो मुअतबर है। वल हाजतु हाहुना इला इस्तिहकाकिल इरसी, और यहां पर जो हाजत है वो वारिस होने का इस्तिहकाक है, कि ये वरासत का मुस्तहिक है, यानी एक चीज की इस बात की जरूरत है, और ये इस बात की दलील नहीं बन सकता। फला यकूनु तावीलु मुअतबरन फी हक़िल इर्सी, लिहाजा तावील जो है वो मुअतबर नहीं होगी वारिस होने के हक में। वलहुमा फीही, अब तरफैन की दलील आ गई, तरफैन फरमाते हैं कि तावील फासिद दफा की दलील बन सकती है, और यहां जो ये शख्स वारिस बन रहा है, यहां हम इस बात नहीं कर रहे दफा ही कर रहे हैं, इस बात वरासत जो है वो तो कराबत की वजह से वारिस होना साबित हो रहा है, वो बागी जिसने अपने मुरीस को कत्ल किया है, तो वो जब करीबी रिश्तेदार है तो कराबत वो इस्तेहकाक वरासत की दलील है कि ये भी वरासत का मुस्तहिक है। लेकिन इस कत्ल की वजह से क्या हिरमान मीरास आएगा या नहीं, तो तावील फासिद हिरमान मीरास को दफा कर देगी, तावील फासिद हिरमान मीरास को दफा कर देगी। इस बात मीरास उसके लिए हम दलील नहीं बना रहे, इस बात मीरास तो किसके जरिए हुआ, करीबी रिश्तेदार होने की वजह से ये वारिस बन रहा है। क्यों वारिस बन रहा है, करीबी रिश्तेदार होने की वजह से, तो इस्तेहकाक इर्स की दलील तो पहले से मौजूद है, सिर्फ यहां हिरमान मीरास का हुक्म आ रहा था और उसके दफा के लिए यह तावील फासिद दलील बन सकती है भाई। तो कहते हैं वल्लहु माफी ही, और तरफेन की दलील इसमें वो ये है कि अनहाजत इला दफ़इल हिरमानी ऐजन, कि यहां पर भी दफ़े हिरमान की हाजत है। इदिल कराबतु सबबुल इर्सी, इसलिए क्योंकि कराबत जो है वो वारिस होने का सबब है। फयुअतबरुल फासिदु फीही, तो इस दफ़े हिरमान के अंदर तावील फासिद मुअतबर होगी और हिरमान मीरास को वो दफा कर देगी। तो कहते हैं फयुअतबरुल फासिदु फीही, तो इस दफ़े हिरमान के अंदर तावील फासिद मुअतबर होगी। इल्ला अन्न मिन शर्तिही बकाअहु अला दियानतिही, इल्ला अन्न मिन शर्तिही, मगर यह कि वारिस होने की शर्त है बकाअहु, कि वो बागी बाकी रहे, अला दियानतिही, अपने मजहब पर। दयानत का एक माना क्या है? मजहब, कि वो बाकी अपने मजहब पर बाकी रहे। जब वो अपने मजहब पर बाकी है तो ये तावील फासिद दफा की दलील बन जाएगी, लेकिन अगर वो अपने मजहब से तौबा कर चुका है तो अब दफा की दलील भी मौजूद नहीं, लिहाजा इस सूरत में ये वरासत से महरूम होगा। तो कहते हैं इल्ला अन्न मिन शर्तिही, मगर ये कि वारिस होने की शर्त जो है बकाअहु, वो उस बागी का बाकी रहना है। अला दियानतिही, अपने मजहब पर। फइदा काल कुंतु अलल बातिली, और जब उसने कहा कि मैं तो बातिल पर था, लम यूजदि दाफिउ, तो अब दाफिउ दलील न पाई गई, यानी वो तावील फासिद नहीं है। फवजबा जमानु, तो जमान वाजिब होगा। قال ويكره بيع السلاح من اهل الفتنه وفي عساكرهم, यहां से बतला रहे हैं कि बागियों को असलहा बेचना मकरूह है, यानी मकरूह है, तहरीमी है भाई। قال صاحب قدوري فرماتے ہیں ويكره بيع السلاح من اهل الفتنه, और मकरूह है असलहे का बेचना اهل فتنہ کے ہاتھ پر, وفي عساكرهم, اور ان کے لشکروں میں, لانه اعانه على المعصيه, इसलिए क्योंकि ये तो गुनाह पर मदद करना है। वलैसा बिबैही बिलकूफति मिन अहलिल कूफा, भाई सूरत ये, एक शख्स जो है कूफा के अंदर असलहा फरोख्त करता है और यहां इससे बागी असलहा खरीद कर लेकर जाते हैं, तो क्या इसका उन बागियों को असलहा बेचना जायज है या नहीं? तवज्जो है, तो याद रखो भाई, अगर इसको इलम ही नहीं है कि यह बागी है फिर तो इसको बेचने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर इलम है कि यह बागी है फिर इस सूरत में बेचना मकरूह तहरीमी है। तो कहते हैं वलैसा बिबैही, और नहीं है इस आदमी का बेचना बिलकूफति, कूफा में, मिन अहलिल कूफति, ये मिन मिन सिला है बैअ का। मैंने आपको बतलाया था बाअ यबीउ का सिला मिन आता है, जिस आदमी के साथ बैअ की जाए उस पर मीन दाखिल करते हैं। मसलन मैंने अपनी किताब जैद के हाथ बेची है तो यूं कहेंगे बिअतुल किताबा मीन जैदिन, यानी मैंने अपनी किताब जैद के हाथ बेच दी। तो कहते हैं वलैसा बिबैही बिलकूफति, और कूफा के अंदर उसका बेचना मीन अहलिल कूफति, किसके हाथ? कूफा वालों के हाथ। वमन लम यारिफ मिन अहलिल फितनती, और उन लोगों के हाथ के जिनको यह नहीं जानता, यानी कि अहले फितना, वो अहले फितना जिनको यह नहीं जानता, उनके हाथ बेचना बासुन, ये लैसा का इस्सा आ गया। देखो फिर जोड़ें वलैसा बिबैही बिलकूफति मिन अहलिल कूफति बासुन, और कूफा के अंदर कूफा वालों के हाथ असलहा बेचने में कोई हरज नहीं है। कूफा में कूफा वालों के हाथ असलहा बेचने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जाहिर यही है कि ज्यादातर लोग यहां नेक हैं, ये बागी नहीं हैं। हां अगर पता है एक आदमी के बारे में कि ये बागी है तो उनके हाथ असलहा बेचना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब है भाई। और यहां पर साहिब हिदाया ने कूफा को जिक्र फरमाया बिलखसूस, तो यह हुक्म कूफा के साथ ही खास नहीं है कि कूफा के अंदर कूफा वालों पर असलहा बेचा जाए तो इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि यह इसलिए जिक्र फरमाया कि बागी सबसे पहले कूफा के अंदर जाहिर हुए थे, तो इसलिए कूफा को जिक्र फरमाया, वरना बाकी शहरों का भी यही हुक्म है भाई। तो कहते हैं वलैसा बिबाइहि बिलकूफति मिन अहलिल कूफति, और नहीं है उसका असलहे का बेचना कूफा में कूफा वालों के हाथ। वह मल्लम यारिफ मिन अहलिल फितनति, और उन अहले फितना के हाथ जिनको वो नहीं जानता, नहीं है इस बेचने में बासुन कोई हरज, इस बेचने में कोई हरज नहीं है। لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح, इसलिए क्योंकि शहरों के अंदर जो गलबा होता है لأهل الصلاح वो नेक लोगों का होता है, शहर में ज्यादातर नेक लोग ही होते हैं, बागी कम ही होंगे। व इन नमा युक रहू बेउ नफ्स सिलाही, और नफ्स असलहा बेचना मकरू है। ला बेउ मा ला युकातलु बिही इल्ला बिसनअतिन, भाई नफ्स असलहा बागियों को बेचना मकरू है, हां वो चीजें जिनसे असलहा बनाया जाएगा यानी लोहा बेचना, तो इसमें कोई कराहत नहीं है। भाई कहते हैं वइन्नमा युकरहु बेउ नफ्स सिलाही, और नफ्स असलहा बेचना मकरू है। ला बेउ मा ला युकातलु बिही, न कि उस चीज का बेचना के जिससे लड़ाई नहीं की जा सकती। इल्ला बिसनअतिन, मगर कारीगरी से, वो चीजें जिनके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती मगर उसमें कारीगरी इस्तेमाल करना पड़ेगी फिर ही, तो उनके बेचने में कोई हर्ज नहीं है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं। अन्नहु युकरहु बेउल माआजिफ, माआजिफ बैजा के साथ है, माआजिफ जमा है मियाजफ की, और मियाजफ कहते हैं आलाय मौसीकी को, मौसीकी का बाजा वगैरह। भाई कहते हैं देखो भाई मौसीकी का बाजा वगैरह ये लकड़ी से बनाया जाता है और लकड़ी के बेचने में कोई कराहत नहीं है। भाई तो कहते हैं अला तरा, क्या आप देखते नहीं। अन्नहु युकरहु बेउल माआजिफी, के गाने बजाने के आलात बेचना मकरूह है। वला युकरहु बेउल खशबी, और लकड़ी का बेचना मकरूह नहीं। वाला हादल खमरु माल इनबी, और इसी पर है शराब अंगूर के साथ, यानी शराब का बेचना वो तो हराम है लेकिन अंगूर जिससे शराब बनाई जाती है उसका बेचना हराम नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, किताबुल लकीत, अल्लकीत सुम्मी बिही बेअतिबारी मा आलिही लिमा अन्नहु युल्कतु वलिल्तिकातु मंदूबुन इलैह। लकीत भाई, ये आखिर में तो है लकीत, याद रखो लकीत वो बच्चा है जिसे कोई रास्ते में डाल देता है फकरो फाके के खौफ से, कोई बहुत गरीब आदमी है तो फकरो फाके के खौफ से उस छोटे से बच्चे को उसने रास्ते में डाल दिया, या जिना की तोहमत के खौफ से किसने बच्चे को रास्ते में डाल दिया, तो इस बच्चे को लकीत कहते हैं। क्या कहते हैं? लकीत। और याद रखो लकता यलकुतु का माना है कि जमीन से किसी चीज को उठाना, तो चूंकि इस बच्चे को भी उठा लिया जाएगा इसलिए इसको लकीत कहते हैं, यानी बेतबार माल और नतीजे के, वो बच्चा जो रास्ते में डाल दिया गया है उसको क्या कहते हैं? लकीत। और लकीत का क्या माना मैंने बताया, लकता यलकुतु का माना जमीन से कोई चीज उठाना, तो लकीत बमाने मलकूत के है, यानी जिसको उठा लिया गया या जिसको उठा लिया जाएगा, तो इस बच्चे को लकीत कहते हैं बएतबार माल और नतीजे के इसको उठा लिया जाएगा। तो कहते हैं किताबुल लकीत, तो ये किताब है लकीत के बयान में। अल्लकीत सुम्मी बिही बेअतिबारी माआलिही, लकीत जो है उसको इस नाम के साथ मौसूम किया गया है बेअतिबारी माआलिही, माआल के एतबार से। लकीत को लकीत क्यों कहते हैं कि इसको भी माआल और नतीजे के एतबार से उठा लिया जाएगा। तो कहते हैं लकीत सुम्मी बिही बेअतिबारी माआलिही, और लकीत जो है इसको इसके माआल और नतीजे के एतबार से लकीत के नाम से मौसूम किया जाता है। लिमा अन्नहु युल्कतु, इस वजह से कि इसको उठा लिया जाएगा। वलिल्तिकातु मंदूबुन इलैही, और इसको उठाना जो है मंदूब है यानी मुस्तहब है। लिमा फीही मिन इह्याईही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर इसको जिंदगी देना है, ये छोटा बच्चा है रास्ते में पड़ा है तो हलाक हो जाएगा, लिहाजा इसका उठाना मुस्तहब है। और याद रखो अगर हलाकत का गालिब गुमान हो तो फिर इसका उठाना वाजिब है, इसका उठाना वाजिब है। तो कहते हैं वलिल तिकातु मंदूबुन इलैहि लिमा फीहि मिन इहयाइहि, और इसको उठाना मुस्तहब है इस वजह से कि इसके अंदर इसको जिंदगी देना है। व इन गलबा अला ज़न्निहि ज़ियाउहु, और अगर उस शख्स के गुमान पर गालिब हो ज़ियाउहु उसका जाया हो जाना, फवाजिबुन तो फिर उठाना वाजिब है। قال اللقيط حر, صاحب قدوری فرماتے ہیں اللقيط حر کہ لقيط آزاد ہے۔ یاد رکھو یہ جو لقيط ہے جو بچہ راستے میں پڑا ہوا ملا ہے یہ آزاد شمار ہوگا, اس پر آزاد لوگوں کے احکام جاری ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اللقيط حر کہ لقيط جو ہے وہ آزاد ہے, لأن الأصل في بني آدم, اس لیے کیونکہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اندر اصل جو ہے انما هو الحرية وہ آزادی ہے, इंसानों के अंदर असल आजादी है क्योंकि इंसान हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमस्सलाम की औलाद हैं और वो आजाद थे तो उनकी औलाद भी आजाद ही शुमार होगी, और जो गुलामी पेश आती है वो किसी आरिस की वजह से पेश आती है भाई। तो कहते हैं لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية, इसलिए क्योंकि औलाद आदम के अंदर असल जो है वो आजादी है। وكذا دار دار الأحرار, और इसी तरह ये दार इस्लाम जो है ये भी आजाद लोगों का दार है। ये दारुल इस्लाम भी क्या है, आजाद लोगों का वतन है, आजाद लोगों का मुल्क है। भाई आप कहेंगे कि दारुल इस्लाम के अंदर तो गुलाम भी होते हैं, तो आपको साहिबे हिदायत बतलाएंगे कि एतबार गालिब का होता है, हुक्म गालिब के एतबार से लगाया जाता है। तवज्जो है, तो दारुल इस्लाम में जाहिर सी बात है आजाद लोग ज्यादा होंगे, अगर गुलाम हैं भी तो थोड़े से होंगे, तो एतबार गालिब का होता है। तो कहते हैं वकदत दारु दारुल अहरारी, और इसी तरह ये दारुल इस्लाम जो है ये भी आजाद लोगों का मुल्क है। वली अन अल हुक्म लिल गालिबी, और इसलिए क्योंकि हुक्म जो है वो गालिब का होता है, यानी गालिब के एतबार से हुक्म लगाया जाता है, यानी गालिब का एतबार होता है। वरना फकतुहु फी बैतिल माली, भाई ये जो लकीत मिला है इसका नफका वगैरह बैतुल माल से अदा किया जाएगा, इस लकीत का नफका और खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाएगा। तो कहते हैं वरना फकतुहु फी बैतिल माली, और इस लकीत का नफका बैतुल माल में होगा। हुवल मरवीयु अन उमर व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और यही रिवायत किया गया है हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, क्योंकि बैतुल माल का माल मुसलमानों का माल है, और ये लकीत ये भी एक मुसलमान है जो अपनी कमाई से आजिज है, तो इस पर बैतुल माल से खर्च किया जाएगा। वली अन्नहु मुस्लिमुन आजिजुन अनित तकस्सुबी, यहां से दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं। एक तो दलील जिक्र कर दी कि यही रिवायत किया गया है हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से, और अब अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो लकीत है ये एक मुसलमान है जो कमाई से आजिज है, तो बैतुल माल का माल वो मुसलमानों के लिए ही है, तो वो ही इस पर खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं वली अन्नहु मुस्लिमुन आजिजुन अनित तकस्सुबी, और इसलिए क्योंकि ये लकीत ऐसा मुसलमान है जो कमाई से आजिज है। वला माल लहू वला कराबता, और ना इसका कोई माल है और ना कोई इसकी रिश्तेदारी। फअशबहल मुकअद अल्लज़ी ला माल लहू, मुकअद कहते हैं अपाहज को भाई, जो माजूर है, अपाहज है, चल फिर नहीं सकता। याद रखो अगर कोई अपाहज है और उसका कोई माल वगैरह नहीं तो उस पर भी बैतुल माल से खर्च किया जाएगा भाई। कहते हैं फअशबहल मुकअद अल्लज़ी ला माल लहू, तो ये मुशाबे हो गया उस अपाहज के जिसका कोई माल ना हो, और जैसे उसका खर्चा बैतुल माल पर होता है तो इस लकीत का खर्चा भी बैतुल माल से होगा। वली अन्न मीरासहु लिबैतिल माली, और इसलिए क्योंकि इस लकीत की मीरास बैतुल माल के लिए होगी। ये लकीत जब मर जाएगा तो इसका सारा माल मीरास बैतुल माल में जमा होगा, क्योंकि इसका तो कोई वारिस वगैरह है ही नहीं भाई। तो कहते हैं वली अन्न मीरासहु लिबैतिल माली, और इसलिए क्योंकि इसकी मीरास बैतुल माल के लिए है। वल खराजु बिज़मानी, और नफा जो है वो जमान के बदले होता है। याद रखो खराज कहते हैं पैदावार को, मुराद है नफा, नफा जमान के बदले होता है। एक चीज का जमान आप दे रहे हैं तो नफा भी आप लेंगे। लकीत का खर्चा बैतुल माल उठा रहा है तो उसका नफा यानी मीरास भी बैतुल माल लेगा। यह जाब्ता आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हदीस में आया है अल गुर्म बिल गुनमी, अल गुर्मो बिल गुनमी के नुकसान जो है वो नफे के बदले है। एक चीज का नुकसान आप उठा रहे हैं तो नफा भी आप ही उठाएंगे भाई। तो कहते हैं वल खराज उबे जमानी, और नफा जो है वो जमान के बदले होता है। व लिहादा कानत जिनायत उफी ही, और इसी वजह से लकीत की जिनायत भी बैतुल माल में होगी। लकीत अगर कोई जिनायत कर देता है, कोई गलती से उससे कोई कत्ल हो गया, तो कत्ले खता में दियत आती है और ये दियत सारे कबीले वाले मिलकर अदा करते हैं, लेकिन लकीत का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, तो फिर वो जिनायत भी बैतुल माल से अदा की जाएगी। क्योंकि अलगुर्मो बिलगुनमी भाई, जब लकीत की मीरास जो है बैतुल माल को मिल रही है तो उसके खर्चे और जुर्म भी बैतुल माल ही को उठाने पड़ेंगे। वलिहादा कान जिनायत हू फी ही, और इसी वजह से लकीत की जिनायत जो है वो भी बैतुल माल में होगी। वल मुल्तकितु मुतबर्रिउन फिल इन्फाकी अलैही, और याद रखो ये बच्चा जिस आदमी को मिला है, अगर ये आदमी इस बच्चे पर खर्च करता है तो ये मुतबर्रिउ है खर्च करने में। मैंने आपको बतलाया था तबर्रुअ कहते हैं कि अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज देना जो आप पर लाजिम नहीं थी भाई, तो ये शख्स भी मुतबर्रिउ है, इस बच्चे पर खर्च करना इस पर लाजिम नहीं, और ये बैतुल माल से लेने के बजाय खुद ही अपनी तरफ से खर्च करता है तो ये मुतबर्रिउ है। लिहाजा ये बच्चा जब बड़ा हो जाए तो ये उसको कहे मैंने तुम्हारे ऊपर इतना इतना माल खर्च किया था, वो तुम्हारे ऊपर देन है, वो तुम्हें अदा करना पड़ेगा। कहते हैं नहीं भाई, ये मुतबर्रिउ था, ये मुतबर्रिउ था, लिहाजा ये बच्चे पर देन लाजिम नहीं कर सकता, इसको विलायत ही नहीं हासिल के बच्चे पर देन को लाजिम करे। हां अगर काजी ने इसको कहा कि तुम इस बच्चे पर खर्च करो और वो इस बच्चे पर देन हो जाएगा, जब ये बालिग हो जाएगा तो वो तुम्हें अदा कर देगा, तो अब जो कुछ ये बच्चे पर खर्च करेगा वो बच्चे पर देन होता जाएगा, क्योंकि काजी ने कहा है कि वो बच्चे पर देन होता जाएगा। और अगर काजी ने देन की बात न की, काजी ने सिर्फ इतना कहा कि तुम इस बच्चे पर खर्च करो जी, तो बच्चे पर फिर भी देन नहीं होगा भाई जी। तो बच्चे पर देन सिर्फ उसी सूरत में होगा जब काजी ने यह कहा हो कि जो कुछ तुम खर्च करोगे वो बच्चे पर देन होता चला जाएगा। तो चूंकि काजी को तो विलायत आमा हासिल है, तो लिहाजा उसको बच्चे पर भी विलायत है, तो वह बच्चे पर देन को लाजिम कर सकता है। तो कहते हैं वल मुल्तकितु मुतबर्रिउन फिल इन्फाक अलैही, और उस बच्चे को उठाने वाला उस पर खर्च करने में मुतबर्रिउ है। लिअदमिल विलायती, क्योंकि उसको उस बच्चे पर विलायत नहीं है, वो बच्चे पर देन को लाजिम नहीं कर सकता। इल्ला अन यअमुरहुल काजी बिही, मगर यह कि काजी उसको इसका हुक्म दे दे। लियकून दैनन अलैही, ताकि उस बच्चे पर देन हो जाए। देखा काजी यह जरूर जिक्र करे कि तुम जो खर्च करोगे वह बच्चे पर देन हो जाएगा, अगर काजी ने यह जिक्र न किया फिर भी बच्चे पर देन नहीं होगा। तो कहते हैं इल्ला अन यअमुरहुल काजी बिही, मगर यह कि काजी उसको इस खर्च करने का हुक्म दे दे। लियकून दैनन अलैही, ताकि यह बच्चे पर देन हो जाए तो फिर देन हो जाएगा। लिउमुमिल विलायती, बवजह विलायत के आम होने के काजी को आम विलायत हासिल है सब पर। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه, بھئی ایک شخص کو ایک بچہ ملا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس بچے کو اس سے لینا چاہتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا میں اس کی حفاظت کروں گا کہتے ہیں نہیں کوئی جبرن اس سے نہیں لے سکتا اگر یہ خود دینا چاہتا ہے پھر تو اچھی بات ہے لیکن جبرن کوئی لینا چاہے نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ بچے پر قبضہ اس آدمی کا پہلے ہوا ہے لہذا یہ اس کی حفاظت کا زیادہ حقدار ہے بھئی قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فإن التقطه رجل اگر اس بچے کو کسی آدمی نے اٹھا لیا لم يكن لغيره أن يأخذه منه تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے لے لے یعنی زبردستی نہیں لے سکتا لأنه ثبت حق الحفظ له اس لیے کیونکہ حفاظت کا حق ثابت ہو گیا اسی آدمی کے لیے لسبق يده اس کا قبضہ مقدم ہونے کی وجہ سے فإن ادعى مدعي انه بنه فالقول قوله صورت یہ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے تو کیا اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں اس کا دعویٰ قسم کے ساتھ ثابت ہو جائے گا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بچے کو اٹھانے والے نے اس کے نسب کا دعویٰ نہ کیا ہو जिसको बच्चा मिला था उसने बच्चे के नसब का दावा नहीं किया, तो फिर कोई दूसरा आदमी नसब का दावा करता है तो उसका यह दावा कसम के साथ मुआतबर होगा, क्योंकि बच्चे को नसब की शदीद हाजत है। क्योंकि अगर इसका नसब का पता ना चला और ये इसी तरह बड़ा हुआ तो कल तो ये बात इसके लिए ताना बन जाएगी, लोग इसको ताना देंगे कि तुम्हारे तो बाप का भी पता नहीं है भाई, तो लिहाजा नसब साबित हो जाएगा। तो कहते हैं फइनी दा मुद्दाइन, और अगर किसी दावा करने वाले ने यह दावा कर दिया अन्नहू बनुहू कि लकीत उसका बेटा है, फल कौलू कौलू तो इस आदमी का कौल मोतबर है, माना हूं माना इसका यह है इदा लम यदाइल मुलतकित नसबहू कि जब मुलतकित ने इसके नसब का दावा ना किया हो, अगर मुलतकित ने नसब का दावा कर दिया है फिर उससे नसब साबित हो जाएगा। तो कहते हैं मानाहू इदालम यह दाहिल मुलतकित नसबहू, माना इस कौल का यह है कि जब मुलतकित यानी इस बच्चे को उठाने वाले ने इस बच्चे के नसब का दावा ना किया हो, वहां इस्तेहसानुन और यह इस्तेहसान है, यह जो कोई दूसरा आदमी इस बच्चे के नसब का दावा कर देता है तो इस्तेहसानन इसके दावे को कबूल कर लिया जाएगा। कियास तो यह तकाजा करता है इसके दावे को कबूल ही नहीं करना चाहिए, वजह यह बच्चे की हिफाजत का हक वो किसका है, वो मुल्तकित का है जिसको वो बच्चा मिला है, तो एक और आदमी बच्चे के नसब का दावा करके गोया बच्चे की हिफाजत का हकदार होना चाहता है, बच्चे की हिफाजत का हकदार होना चाहता है, लिहाजा कियास तो यह तकाजा करता है कि वो दूसरे आदमी का दावा मोतबर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन उसका यह दावा मोतबर है। भाई क्यों इस्तेहसानन क्यों मोतबर है, कहते हैं वजह यह कि बच्चे को नसब की शदीद हाजत है, वरना तो यह आइंदा उसकी सारी जिंदगी के लिए उसके लिए ताने का बाइस बनेगा, लिहाजा इस्तेहसानन बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। तो कहते हैं वहाद इस्तेहसान और यह इस्तेहसान है, वल कियास अल्लाह युकबलु कौलुहु और कियास तो यह है कि उस आदमी का कौल कबूल न किया जाए, लिअन्नहु यतज़म्मनु इब्ताल हक़िल मुल्तक़िति इसलिए क्योंकि उसका यह दावा मुतज़म्मिन है मुल्तक़िद के हक को बातिल करने पर, यानी वो दूसरा आदमी दावा तो नसब का कर रहा है लेकिन उसी नसब के दावे के जिमन में गोया वो मुल्तक़िद के हक को बातिल करना चाहता है, बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तवज्जो है, तो ये माना है लिअन्नहु यतज़म्मनु इसलिए क्योंकि उस आदमी का ये दावा जो है वो मुतज़म्मिन है इब्ताल हक़िल मुल्तक़िति मुल्तक़िद के हक को बातिल करने पर, वजहुल इस्तेहसानी और इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु इकरारुन लिस्सबी बिमा यनफ़ऊहु कि ये इकरार है बच्चे के लिए ऐसी चीज का जिसमें उस बच्चे का नफा है, लिअन्नहु यतशर्रफु बिन्नसबी इसलिए क्योंकि वो बच्चा जो है वो नसब की इज्जत पा लेगा, तशर्रफ का माना है इज्जत हासिल कर लेना, लिअन्नहु यतशर्रफु बिन्नसबी इसलिए क्योंकि वो बच्चा जो है नसब का एजाज हासिल कर लेगा, व युअय्यरु बिअदमिही और उसको ताना दिया जाएगा नसब न होने की वजह से, तो लिहाजा इसमें बच्चे का नफा है। सुम्मा कीला फिर उसके बाद कहते हैं फुकहा का इख्तिलाफ है कि नसब तो साबित हो गया तो क्या आप ये शख्स लकीद को उस मुल्तकिद से ले सकता है, तो बाज़ फुकहा कहते हैं नहीं, इसका दावा नसब के सिलसिले में तो मुआतबर है लेकिन मुल्तकिद का कब्जा यह खत्म नहीं करवा सकता, बच्चा मुल्तकिद ही के पास रहेगा, लेकिन दीगर फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, जब नसब साबित हो गया तो मुल्तकिद का कब्जा भी बातिल हो जाएगा, अब वो बच्चे को उस दूसरे आदमी के हवाले करना पड़ेगा। तो कहते हैं सुम मकील फिर कहा गया है यसिहु फी हक़िही कि इस आदमी का दावा नसब के हक में तो सहीह है, दून इब्ताल यदिल मुल्तकिति मुल्तकिद का कब्जा बातिल करने में नहीं, इसे मुल्तकिद का कब्जा वो बातिल नहीं कर सकता, उसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। वकील और कहा गया है यब तनी अलैही कि सबूत नसब पर बुनियाद है बुतलानु यदिही मुल्तकिद के कब्जे के बातिल होने की, कि नसब की वजह से मुल्तकिद का कब्जा भी बातिल हो जाएगा, अब वो शख्स इस बच्चे को जबरदस्ती ले सकता है। तो कहते हैं वकीला और कहा गया है यब तनी अलैहि बुतलानु यदिही कि सबूत नसब पर बुनियाद है मुल्तकिद के कब्जे के बातिल होने की, आगे देखिए वलवि दाहुल मुलतकी तुकील यसिहु। भाई याद रखो, अगर मुलतकित खुद ही बच्चे के नसब का दावा कर दे कि ये मेरा बच्चा है तो इस सूरत में भी नसब साबित हो जाएगा, नसब साबित हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले दावा करता है, अगर पहले किसी और ने दावा कर दिया तो फिर उससे बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। तो कहते हैं वला भी दाहुल मुलतकितु, और अगर इस नसब का दावा मुलतकित ने कर दिया, कीला तो कहा गया है यसिहु कियासन वस्तेहसानन, कि मुलतकित का यह दावा सही है कियासन भी और इस्तेहसानन भी। मुलतकित का यह दावा सही है कियासन भी और इस्तेहसानन भी। बतलाना ये चाहते हैं यहां कोई कियासे मुखालिफ नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इस्तेहसान, इस्तेहसान के मुकाबले में कियास होता है हमेशा जी। और यहां कह रहे हैं ये कियासन भी सही है और इस्तेहसानन भी सही। कहना ये चाहते हैं कि ये नसब साबित हो जाएगा और यहां कोई कियास मुखालिफ नहीं है, यानी ये हुक्म कियासन भी है और इस्तेहसानन भी है, दोनों एतबार से है, यानी यहां कोई कियास मुखालिफ नहीं है भाई। तो कहते हैं कीला कहा गया है यसिहु के इसका दावा सही है कियासन वस्तेहसानन, कियास और इस्तेहसान के एतबार से, यानी यहां कोई कियास मुखालिफ नहीं है। वल असहु, और ज्यादा सही यह है कि अन्नहु अलल कियासी वल इस्तेहसानी, कि इसका यह दावा भी कियास और इस्तेहसान पर है, यानी यहां कियास मुखालिफ मौजूद है। वजह क्या? भाई कियास यह तकाजा करता है कि मुलतकित का दावा सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले कहा था यह लकीत है, यह मुझे रास्ते में मिला है, और अब कह रहा है कि यह मेरा बेटा है, और अपना बेटा वो तो लकीत नहीं हो सकता, तो इसका दावा ही अपने कलाम के मुनाकिज है, उसके दोनों दावों में तजाद आ रहा है। पहले उसने कहा लकीत है और अब कह रहा है बेटा है, हालांकि जो बेटा हो वो तो लकीत नहीं हो सकता भाई, लेकिन इस्तेहसानन उसका नसब साबित हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे को नसब की इज्जत मिल जाएगी, और नीस अब इस शख्स पर बच्चे की हिफाजत और उसका नफका लाजिम हो जाएगा भाई, नफका लाजिम हो जाएगा। और एक शख्स की दो बातों में तनाकुज आए फिर भी नसब साबित हो सकता है, एक आदमी के दो दावों में तनाकुज है फिर भी नसब साबित हो सकता है, इसलिए क्योंकि बच्चे को नसब की शदीद हाजत है। जैसे एक शख्स की औलाद हुई और उसने कहा कि यह मेरी औलाद नहीं है, और बीवी ने लियान कर दिया कि यह शख्स इसने मुझ पर जिना का इल्जाम लगाया है, तवज्जो है, और बाद में यह आदमी कहता है कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है। तो देखो इस सूरत में भी अगरचे उसकी दोनों बातों में तनाकुज है, पहले उसने कहा था ये मेरा बच्चा नहीं है और अब कहता है मेरा बच्चा है, लेकिन इसकी बातों में तनाकुज के बावजूद बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। तो यहां भी अगरचे उसने पहले कहा था यह लकीत है और अब कह रहा है मेरा बेटा है, और दोनों बातों में तनाकुज है, फिर भी नसब साबित हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को नसब की शदीद हाजत है भाई। तो कहते हैं वल असहु, और ज्यादा सही बात यह है कि अन्नहु अलल कियास वल इस्तेहसानी, कि यह मुल्तकित का दावा जो है यह भी कियास और इस्तेहसान पर है, यानी यहां कियास मुखालिफ मौजूद है। वकद उरिफा फिल असली, और तहकीक इस बात को मबसूत के अंदर जाना गया है कि यहां कियास मुखालिफ मौजूद है। आगे देखिए व इन दा हुस्नानी व सफा अहदुहुमा अला मतन फी जसदिही फहुआ औला बिही। भाई याद रखो, अगर लकीत के बारे में दो आदमियों ने दावा कर दिया, एक कहता है ये मेरा बच्चा है, दूसरा कहता है ये मेरा बच्चा है, तो जिसका दावा मुकद्दम होगा नसब उससे साबित हो जाएगा। और अगर दोनों ने एक ही वक्त में दावा किया है और तरजीह की कोई सूरत ना हो, तो दोनों से बच्चे का नसब साबित हो जाएगा, ये बच्चा दोनों का वारिस बनेगा भाई। तवज्जो है, दोनों से नसब साबित होता है कि दोनों एक ही वक्त में कहते हैं ये मेरा बच्चा है, या मसलन एक ने किसी और मजलिस में कहा है, दूसरे ने किसी और मजलिस में कहा है, लेकिन तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता, तो इसको भी इकट्ठा ही शुमार किया जाएगा, तो इस सूरत में भी दोनों से नसब साबित हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक ने बच्चे के जिस्म में कोई निशानी और कोई अलामत बयान कर दी और वो निशानी सही निकली, तो फिर उसी से नसब साबित हो जाएगा, क्योंकि वहां तरजीह मौजूद है। या दोनों में से एक ने बैयना कायम कर दी, तो बैयना के जरिए भी दावा साबित हो जाता है, लिहाजा उससे नसब साबित हो जाएगा। तो कहते हैं वह इनी दा हुस्नानी, और अगर दो आदमियों ने बच्चे के नसब का दावा कर दिया, वबा सफा अहदुहुमा अलामतन फी जसदी ही, और दोनों में से एक ने उस लकीत के जिस्म में कोई अलामत बयान कर दी, फहुआ औला बिही, तो वो उसके ज्यादा लायक है, यानी उससे नसब साबित हो जाएगा। ले अन जाहिरा शाहिदुन लहू, क्योंकि जाहिर उसी का गवाह है, जाहिर उसी की गवाही दे रहा है। लि मुआफकतिल अलामति कलामहू, इस वजह से कि यह अलामत उसके कलाम के मुआफिक है। वह इल्लम यसिफ अहदुहुमा अलामतन, और अगर दोनों में से किसी ने भी कोई अलामत बयान नहीं की, फहुआ बनुहुमा, तो यह दोनों का बेटा है। लिस्तिवा इहिमा फिस सबबी, इस वजह से कि सबब के अंदर दोनों बराबर हैं, किसी को तरजीह नहीं दी जा सकती, तो सबब यानी दावे में दोनों बराबर हैं। वलाउ सबकत दावत अहदिहिमा, मैंने आपको बतलाया था भाई कि दावा का लफ्ज आम है, हर दावे को शामिल है, लेकिन बिलखसूस नसब के दावा जो है उसके लिए दावा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो यहां इबारत में आप दावा भी पढ़ सकते हैं और दावा भी। तो कहते हैं वला उसका बकत दावत अहदिहिमा, और अगर इन दोनों में से एक का दावा मुकदम हो गया, फहुआ बनुहू, तो ये उसी का बेटा है। लिअन्नहु सबता हकुहू, इसलिए क्योंकि इसका हक साबित हो गया। फी जमानिन, ऐसे जमाने में, ला मुनाजिअ लहू फीही, जिसमें कोई इससे झगड़ने वाला नहीं है। भाई एक आदमी ने पहले दावा कर दिया, तो इस जमाने के अंदर तो और कोई दावा करने वाला नहीं, कोई इसके साथ झगड़ने वाला नहीं, लिहाजा इसका दावा साबित हो जाएगा। यह माना है लिअन्नहु सबता हक़ुहु फी ज़मानिन, इसलिए क्योंकि इसका हक साबित हो गया ऐसे जमाने में, ला मुनाज़िअ लहु फीही, जिसमें उसके साथ कोई झगड़ने वाला नहीं है। इल्ला इज़ा अक़ाम अल-आख़रुल बय्यिनता, मगर यह कि जब वो दूसरा आदमी बय्यिना कायम कर दे, फिर उसका दावा साबित हो जाएगा। लिअन्न अल-बय्यिनता था अकवा, इसलिए क्योंकि बयना जो है वो ज्यादा कवी है अलामत के मुकाबले में। आगे देखिए वह इदा वुजिदा फी मिस्र मिन अमसारिल मुस्लिमीन, भाई सूरत यह है कि एक लकीत मिला है, एक बच्चा मिला है रास्ते में मुसलमानों के इलाके में से, और उसको पाने वाला भी मुसलमान है, तो इस सूरत में याद रखो इस बच्चे को मुसलमान शुमार किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा जिम्मियों के इलाके के अंदर मिला है और किसी जिम्मी को मिला है, तो यह बच्चा भी जिम्मी शुमार होगा। तो कहते हैं वह इदा वुजिदा फी मिस्र मिन अमसारिल मुस्लिमीना, जब मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में पाया जाए, और फी क़रियतिन मिन कुराहुम, या मुसलमानों की बस्तियों में से किसी बस्ती में वह लकीत पाया जाए, फदअ ज़िम्मीयुन अन्नहु बनुहु, फिर एक जिम्मी ने दावा कर दिया कि यह उसका बेटा है। सूरत क्या है कि बच्चा मुसलमानों के इलाके में मिला है और पाने वाला भी मुसलमान है, लेकिन बच्चे के नसब का दावा एक जिम्मी ने कर दिया, तो क्या अब नसब साबित होगा या नहीं? कहते हां नसब साबित हो जाएगा। यहां भी बतलाएंगे कि कियास तो यह तकाजा करता है कि नसब साबित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे का नुकसान है, क्योंकि जिम्मी के ताबे इसको भी जिम्मी करार देना पड़ेगा। लेकिन आपको बतलाएंगे इस्तेहसाना नसब साबित हो जाएगा। वजह यह कि यहां दो चीजें हैं, नसब के एतबार से देखें तो बच्चे का फायदा है, लेकिन बच्चे को भी जिम्मी करार देने के एतबार से देखें तो बच्चे का नुकसान है। तो जिस चीज में बच्चे का फायदा है उसके अंदर तो दावा साबित हो जाएगा, यानी नसब साबित हो जाएगा, लेकिन जिस चीज में बच्चे का नुकसान है उसमें दावा साबित नहीं होगा, यानी बच्चा उसी जिम्मी का होगा लेकिन मुसलमान शुमार होगा। तो कहते हैं फदा जिम्मी युन अन्नहु बनुहु, तो एक जिम्मी ने दावा कर दिया कि ये उसका बेटा है। सबता नसबुहु मिनहु, तो उस जिम्मी से उस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। वकान मुस्लिमा, और वो मुसलमान होगा। वहां इस्तेहसान, और ये इस्तेहसान है। लिअन्न दावाहु तज़म्मन नसबा, इसलिए क्योंकि जिम्मी का दावा जो है मुतज़म्मिन है नसब को। वह हुआ नाफ़िउन लिसग़ीरी, और वो तो बच्चे के लिए नाफ़िउ है। वह इब्ताल इस्लामी, और नीज उसका दावा मुतज़म्मिन है उसके बच्चे के इस्लाम को बातिल करने पर। जिम्मी का दावा बच्चे के इस्लाम को बातिल करने को मुतज़म्मिन है। वो इस्लाम असाबिति बिदारी, जो साबित हो रहा है दारुल इस्लाम की वजह से कि यह बच्चा कहां मिला है, दारुल इस्लाम में मिला है, मुसलमानों के इलाके में मिला है, तो यह तकाजा कर रहा है इसको मुसलमान शुमार करना चाहिए। तो जिम्मी के दावा मुतज़म्मिन हुआ नसब को भी और इबताल इस्लाम को भी। नसब के अंदर बच्चे का फायदा और इबताल इस्लाम के अंदर बच्चे का नुकसान है, तो जिस चीज में नफा है बच्चे का उसको मान लिया जाएगा, और जिसमें नुकसान है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वह इब्ताल अल इस्लाम इसाबिती बिद्दारी, और नीज ये दावा मुतजमीन है बच्चे के उस इस्लाम को बातिल करने का जो दारुल इस्लाम की वजह से साबित है। वह हुआ या जुर्रुहू, और ये तो बच्चे के नुकसान दे रहा है। फसहत दावत उहू फीमा यनफाउहू, लिहाजा उस जिम्मी का दावा सही है उस चीज में जो बच्चे को नफा दे रहा है। दू नमा या जुर्रुहू, ना कि उस चीज में जो उसको नुकसान दे रहा है। वह इन उजीदफी कर यतिम मिन कुरा अहले जिम्मती, दूसरी सूरत भाई जिम्मियों के इलाके के अंदर कोई बच्चा मिला और किसी जिम्मी को मिला है तो फिर इस सूरत में वो जिम्मी शुमार होगा। कहते हैं वह इन उजीदफी कर यतिम मिन कुरा अहले जिम्मती, और अगर जिम्मियों की बस्ती में से किसी बस्ती के अंदर कोई बच्चा मिला, औफी बी अतिन औ कनीसतिन, या ईसाइयों की इबादत गाह में या यहूदियों की इबादत गाह में कोई बच्चा मिला, कान जिम्मी, या तो ये जिम्मी होगा, यानी इलाका भी किसका, जिम्मियों का, या इबादतगाह भी जिम्मियों की और पाने वाला भी जिम्मी ही है भाई, तवज्जो है। हां, मुसलमान को अगर मिलता है उसकी बात आगे बयान करेंगे। कहते हैं जिम्मियों के इलाके में या उनकी इबादतगाह में मिला और पाने वाला भी जिम्मी है, कान जिम्मी, या तो ये बच्चा भी जिम्मी होगा। वहाद अल जवाब फीमा इदा कान अल वाजिदु जिम्मियान, और ये जवाब है उस सूरत में जब पाने वाला जिम्मी हो, यानी ये मसला उस सूरत में है, यानी इस बच्चे को जिम्मी तब शुमार करेंगे जब पाने वाला भी जिम्मी हो। रिवायतम वाहिदतन, एक ही रिवायत है, यानी इसमें इख्तिलाफ नहीं है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहाद अल जवाबु फीमा इदा कान अल वाजिदु जिम्मियन रिवायतम वाहिदतन, और ये जवाब उस सूरत में है जब पाने वाला जिम्मी हो। रिवायतम वाहिदतन, इस हाल में कि एक ही रिवायत है, यानी ये एक ही रिवायत है, इस सिलसिले में इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। वह इन कानल वाजिद मुस्लिमन फी हादल मकानी और जिम्मियन फी मकान इल मुस्लिमीन, अब वो सूरत बयान कर रहे हैं भाई कि मुसलमानों के इलाके में किसी जिम्मी को कोई बच्चा मिला है, या जिम्मियों के इलाके या उनकी इबादतगाह में मुसलमानों को कोई बच्चा मिला है, तो इस सिलसिले में रिवायात मुख्तलिफ हैं भाई, तो वो साहिबे हिदाया आगे बयान फरमाएंगे। कहते हैं वह इन कानल वाजिदु मुस्लिमन फी हादल मकानी, और अगर उस लकीत को पाने वाला मुसलमान है उस जगह में, यानी जिम्मियों के इलाके में या उनकी इबादतगाह में किसी मुसलमान को बच्चा मिला है, और जिम्मियन फी मकानिल मुस्लिमीना, या उस बच्चे को पाने वाला जिम्मी है मुसलमानों की जगह के अंदर, इख्तलफत रिवायत फीही, तो इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ है। फी रिवायती किताबिल लकीत, किताबुल लकीत भाई मबसूद की किताबुल लकीत से पता चलता है कि वहां उस जगह का एतबार है, मुसलमानों के इलाके में मिला है तो मुसलमान शुमार होगा, और जिम्मियों के इलाके या उनकी इबादतगाह में मिला है तो वो जिम्मी शुमार होगा। तो कहते हैं फफी रिवायती किताबुल लकीत, तो किताबुल लकीत की रिवायत में उतुबिरल मकान लिसबकी ही, वो जगह मोतबर होगी लिसबकी ही उसके मुकदम होने की वजह से। तवज्जो है, याद रखो इसको आप उतुबीरा भी पढ़ सकते हैं कि किताबुल लकीत की रिवायत में उतुबीरा अल मकान, मकान का एतबार किया गया है लिसबकी ही, मकान के मुकदम होने की वजह से कि बच्चा जहां मिला है तो वो जगह मुकदम है और पाने वाला बाद में आया है तो जगह का एतबार होगा। और तो आप चाहें तो इसको मजहूल पढ़ लें, और आप चाहें तो इअतबारा इसको फेले मारूफ भी पढ़ सकते हैं, इअतबारा अल मकाना, के मबसूद की किताबुल लकीत के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जगह का एतबार किया है लिसबकी ही, जगह के मुकदम होने की वजह से। तवज्जो है, तो ये आगे भी इसी तरह दो तीन एतबारा इसी तरह आएगा, वहां आप मारूफ भी पढ़ सकते हैं और मजहूल भी। तो कहते हैं फफी रिवायती किताबिल लकीत उतुबिरल मकान लिसबकी ही, तो मबसूद की किताबुल लकीत की रिवायत में जगह का एतबार किया गया है लिसबकी ही उसके मुकदम होने की वजह से। वफी किताबिद दावा फी बाज़िन नुसखी, और इसी तरह मबसूद के बाज़े नुस्खों की किताबुद दावा में, मबसूद के बाज़े नुस्खों की किताबुद दावा में, कहते हैं वफी किताबिद दावा फी बाज़िन नुसखी, और मबसूद के बाज़े नुस्खों की किताबुद दावा में उतुबिरल वाजिदु, पाने वाले का एतबार किया गया है, या यूं भी आप मारूफ भी पढ़ सकते हैं इअतबरल वाजिदा, पाने वाले का एतबार किया है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। तो मबसूद के बाद नुस्खों की किताबु दावा के अंदर उतु बिरल वाजिदु पाने वाले का एतबार किया गया है। वह हुआ रिवायत इब्नि समाअत अन मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला, और यह रिवायत है इब्ने समाअ की इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से। इब्ने समाअ याद रखो ये भी बहुत बड़े अहनाफ के फकीह और बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, और ये शागिर्द हैं साहिबैन के। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से भी रिवायत करते हैं और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से भी रिवायत करते हैं। तो कहते हैं वह हुआ रिवायत बनी समाअत अन मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला, और ये इमाम इब्ने समाअ रहिमहुल्लाह की रिवायत है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से। लिकुवतिल यदी, कब्जे के कवि होने की वजह से। इस रिवायत के मुताबिक जिसको बच्चा मिला है उसका एतबार है, क्योंकि कब्जा कवि है, जगह के मुकाबले में कब्जा कवि है भाई। लिकुवतिल यदि, कब्जे के कवि होने की वजह से। अला तरा, क्या आप देखते नहीं। अन्न तबईयतल अबवैन फौक तबईयति दार, वजाहत कर रहे हैं कि कब्जा कवि कैसे है जगह के मुकाबले में। बच्चा मिला है मुसलमानों के इलाके में, कब्जा कवि कैसे है। तो बतला रहे हैं कि देखिए दारुल इस्लाम के अंदर किसी जिम्मी के यहां जब औलाद पैदा होती है तो अब दारुल इस्लाम के एतबार से देखें तो इस बच्चे को मुसलमान शुमार करना चाहिए क्योंकि दारुल इस्लाम में है, लेकिन वो वालिदैन के कब्जे में है तो कब्जा तकाजा कर रहा है इसको जिम्मी करार देना चाहिए, और आप जानते हैं इस बच्चे को जिम्मी करार दिया जाता है। मालूम हुआ कब्जा जो है वो दार से ज्यादा कवि है भाई, कब्जा जो है दार से ज्यादा कवि है। ये माना है अला तरा, क्या आप देखते नहीं। अन्न तबईयतल अबवैनी फौक तबईयति दारी, कि वालिदैन का ताबे होना दार के ताबे होने से बढ़कर है। वालिदैन का ताबे होना दार के ताबे होने से बढ़कर है, इसलिए क्योंकि बच्चा वालिदैन का जुज है। वालिदैन और बच्चों में जुजियत वाला ताल्लुक है, लेकिन दार और बच्चे में तो जुजियत वाला ताल्लुक नहीं है। यह माना है अला तरा कि आप देखते नहीं। अन्न तबईयतल अबवैनी फौक तबईयति दारी, कि वालिदैन के ताबे होना यह दार के ताबे होने से बढ़कर है। हत्ता इदा सुबिया मा सगीरी अहदुहुमा युअतबरु काफिरा, यहां तक कि बच्चे को नाबालिग को अगर वालिदैन में से किसी एक के साथ कैदी बनाया गया तो उसको काफिर ही शुमार किया जाता है। भाई दारुल हर्म में किसी नाबालिग को वालदैन में से किसी एक के साथ कैदी बनाया गया है तो इस बच्चे को भी वालदैन के ताबे काफिर ही करार दिया जाता है। मालूम हुआ कब्जा जो है वो ज्यादा कवी है दार के मुकाबले में। तो कहते हैं हत्ता इदा सुबिया मा सगीरी अहदुहुमा, यहां तक कि नाबालिग के साथ वालदैन में से किसी एक को कैद कर लिया जाए। युअतबरु काफिरा, तो उस नाबालिग को भी काफिर ही एतबार किया जाता है, यानी उसे काफिर ही शुमार किया जाता है। वफी बाजी नुसखी ही, और इसी तरह किताबु दावा के बाद नुस्खों के अंदर है। उतुबिर अल इस्लाम, के इस्लाम का एतबार है, या यहां भी आप मारूफ पढ़ सकते हैं एतबर अल इस्लाम, के किताबु दावा के बाद नुस्खों में है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इस्लाम का एतबार किया है। तो कहते हैं वफी बाज़ नुस्खी ही, और उसके बाद नुस्खों में है उतुबिर अल इस्लाम, के इस्लाम जो है वह मोतबर है। नजारन लिस्सगीरी, उस नाबालिग पर शफकत करते हुए कि इस्लाम के अंदर उसका नफा है लिहाजा उसको मुसलमान शुमार किया जाएगा। आगे देखिए भाई वह मनी दहा अन्न लकीत अब्दुहू लम युकबल मिन्हू। सूरत मसला यह कि एक शख्स ने दावा कर दिया कि यह जो बच्चा मिला है यह मेरा गुलाम है। कहते हैं इस सूरत में उसका दावा कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह बच्चा जो है यह आजाद शुमार होगा, इस पर आजाद लोगों के अहकाम जारी होंगे। हां अगर वह दावा करने वाला वो बैयना पेश कर देता है, गवाह पेश कर देता है, फिर इस सूरत के अंदर उसके बैयना को कबूल किया जाएगा। कहते हैं वह मनी दा अन लकीत अब्दुहू, और जिस शख्स ने यह दावा कर दिया कि यह लकीत जो है यह उसका गुलाम है। लम युकबल मिनहू, तो उसके कौल को कबूल नहीं किया जाएगा। लिअन्नहु हुर्रुन ज़ाहिरन, इसलिए क्योंकि यह लकीत आजाद है जाहिर के एतबार से। इल्ला अन युकीम अल बय्यिनत, मगर यह कि वह शख्स बय्यिना कायम कर दे कि अन्नहु अब्दुहू, कि यह उसका गुलाम है। फैनी दा अब्दुन अन्नहु इब्नुहू, भाई सूरत यह एक गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लकीत मेरा बेटा है तो क्या अब भी नसब साबित होगा। कहते हैं हां नसब की लकीत को शदीद हाजत है लिहाजा नसब साबित हो जाएगा, अलबत्ता फिर भी इसको आजाद ही शुमार किया जाएगा। फिर भी आजाद। तो इस पर इश्काल होता है कि बाप गुलाम हो और बच्चा आजाद हो, यह कैसे हो सकता है? कहते हैं भाई गुलाम अगर एक आजाद औरत से निकाह कर लेता है तो बच्चे आजादी और गुलामी में मां के ताबे होते हैं, तो इस गुलाम के बच्चे भी आजाद शुमार होंगे जब मां आजाद है। और अगर गुलाम बांदी से निकाह कर लेता है तो इस गुलाम के बच्चे जो हैं मां के ताबे होकर गुलाम और बांदियां शुमार होंगे। तो इस लकीत में दोनों इहतमाल आ गए, हो सकता है किसी आजाद मां ने इसको जन्म दिया हो तो यह आजाद हो, और हो सकता है इसको बांदी ने जन्म दिया हो तो यह भी गुलाम हो। तो इसकी आजादी और गुलामी में शक आ गया, और शक की वजह से गुलामी साबित नहीं हो सकती क्योंकि इंसान के अंदर असल आजादी है भाई। तो कहते हैं फईनी दा अब्दुन अन्नहु इब्नुहु, अगर एक गुलाम ने दावा कर दिया कि यह लकीत उसका बेटा है, सबता नसबुहु मिनहु, तो उस लकीत का नसब उस गुलाम से साबित हो जाएगा, ले अन्नहु यनफउहु, इसलिए क्योंकि नसब उसको फायदा दे रहा है, वकान हुर्रा, और वो बच्चा जो है वो आजाद होगा, ले अन्नल ममलूक कद तलिदु लहुल हुर्रतु, इसलिए क्योंकि ममलूक के लिए कभी आजाद औरत बच्चे को जन्म देती है, फला तब तुलुल हुर्रियतु ज़ाहिरतु बिशक की, लिहाजा इसकी वो आजादी जो जाहिर है वो शक की वजह से बातिल नहीं होगी, वल हुर्रु फी दिअवतिही लकीत औला मिनल अब्दी। भाई इन्होंने आपको बतलाया था कि अगर दो आदमी लकीत के बारे में दावा कर दें तो जो पहले दावा करें तो उससे लकीत का नसब साबित हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों इकट्ठे दावा करें और तरजीह की कोई सूरत ना हो तो फिर वो लकीत दोनों का बेटा शुमार होगा। लेकिन अगर वहां तरजीह की वजह है, मसलन जिन दो आदमियों ने दावा किया है एक आजाद है और दूसरा गुलाम है, तो आजाद आदमी को तरजीह होगी, उससे लकीत का नसब साबित हो जाएगा, गुलाम से उसका नसब साबित नहीं होगा। या इसी तरह दो आदमियों ने इकट्ठा दावा किया है या अलग अलग मजलिसों में दावा किया है लेकिन तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता, तो इसको भी इकट्ठा ही शुमार किया जाता है, लेकिन उनमें से एक मुसलमान है और एक जिम्मी है तो यहां भी मुसलमान को तरजीह होगी, लिहाजा इसको मुसलमान का बच्चा शुमार करेंगे, जिम्मी का बच्चा शुमार नहीं करेंगे। तो कहते हैं वलहुर्रु फी दावतिही लकीता, और आजाद आदमी उल लकीत के बारे में अपने दावे के अंदर, औला मिनल अब्दी, वो बेहतर है गुलाम के मुकाबले में, वल मुस्लिमु औला मिनल जिम्मी, और मुसलमान बेहतर है जिम्मी के मुकाबले में, तरजीहन लिमा हुवल अनज़रु फी हक़िही, तरजीह देते हुए उस चीज को जिसमें ज्यादा शफकत है उस लकीत के हक में, जिसमें लकीत के हक में ज्यादा शफकत है। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अब सूरत यह है कि लकीत के साथ कुछ माल भी बंधा हुआ मिला जी। तो आपको बताएंगे कि यह माल लकीत ही का शुमार होगा, या इसी तरह लकीत किसी सवारी पर मिला है और उस पर सवारी के साथ कुछ माल भी बंधा हुआ था तो इस सूरत में भी यह माल लकीत ही का शुमार होगा। लेकिन अगर बच्चा अलग मिला और माल उसके साथ अलग पड़ा है तो इस सूरत में यह माल बच्चे का शुमार नहीं होगा भाई। कहते हैं वह इं वजीदा माल लकीत माल उन मशदूद उन अलई ही, और अगर लकीत के साथ पाया गया ऐसा माल मशदूद उन अलई ही जिसको उस पर बांधा गया है, फहुआ लहू, तो ये माल उस लकीत ही का है, एतबार अन ले जाहिरी, जाहिर का एतबार करते हुए कि माल उसी का है क्योंकि उसी के कब्जे में है, उसके साथ बांधा हुआ है, वकदा इदाका न मशदूदन अला दाबतिन वह हुआ अलैहा, और इसी तरह है हुक्म जब वो माल बांधा गया हो सवारी पर, वह हुआ अलैहा, इस हाल में के लकीत उसी सवारी पर है, लिमा ज़करना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि जाहिर यही है कि ये माल इसके साथ है तो ये इसी का ममलूक है भाई। सुम यसरिफुहुल वाजिदु इलैहि बि अम्रिल काजी, भाई अब क्या यह शख्स जिसको यह लकीत और इसका माल मिला है क्या यह इस माल में से इस लकीत पर खुद खर्च कर सकता है या काजी की इजाजत की जरूरत होगी? तो आपको बतलाएंगे कि वो इस माल को काजी की इजाजत से खर्च कर सकता है, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि जाहिर यही है यह इस लकीत का माल है लिहाजा काजी की इजाजत के बगैर भी इस पर खर्च कर सकता है। कहते हैं सुम यसरिफुहुल वाजिदु इलैहि बि अम्रिल काजी, फिर इस माल को पाने वाला उस लकीत पर खर्च करेगा, बि अम्रिल काजी, काजी के हुक्म से, लिअन्नहु मालुन ज़ाइउन, इसलिए क्योंकि यह गुमशुदा माल है, यह गुमशुदा माल है, और काजी को विलायत होती है कि इस तरह का गुमशुदा माल वो लकीत पर खर्च करने का हुक्म दे सकता है। तो कहते हैं लिअन्नहु मालुन ज़ाइउन, इसलिए क्योंकि ये ज़ाया माल है यानी गुमशुदा माल है। वलिल काजी विलायतु सर्फी मिस्लिही इलैही, और काजी को विलायत होती है इस तरह का ज़ाया माल लकीत पर खर्च करने की। वकीला, और कहा गया है यसरिफुहु बिगैरि अम्रिल काजी, कि वो पाने वाला काजी के हुक्म के बगैर भी इस माल को उस लकीत पर खर्च कर सकता है। लिअन्नहु लिल लकीति ज़ाहिरन, इसलिए क्योंकि माल लकीत ही का है जाहिर के एतबार से। आगे देखिए वलहू विलायतुल इन्फाकी वशीरा उमाला बुद्ध लहू मिनहू, यहां से बतला रहे हैं कि मुल्तकित को लकीत पर किस किस चीज की विलायत हासिल है और किस चीज की विलायत हासिल नहीं। भाई तो कहते हैं वलहू विलायतुल इन्फाकी, उस मुल्तकित को विलायत है उस पर खर्च करने की। वशीरा उमाला बुद्ध लहू मिनहू, और उस चीज के खरीदने की जो उस लकीत के लिए जरूरी है। कत्तामी वल किस्वती की, जैसे कि खाना है और कपड़े हैं। लिअन्नहू मिनल इन्फाकी लहू, इसलिए क्योंकि ये भी उसी पर खर्च करने में से है। यानी लकीत के लिए ऐसी चीज खरीदना जिसकी उसको जरूरत है, तो यह भी गोया उसी पर खर्च किया जा रहा है। वला यजूजु तजवीजुल मुल्तकिती, और मुल्तकित का निकाह करवाना जायज नहीं। मुल्तकित को यह विलायत नहीं है कि इस लकीत का निकाह करवा दे। कहते हैं वला यजूजु तजवीजुल मुल्तकिती, और मुल्तकित का इस लकीत का निकाह करवाना जायज नहीं है। लिनइदामी सबबिल विलायती, इस वजह से कि विलायत का सबब मादूम है। मुल्तकित जो है उसको इस बात की विलायत नहीं है कि वो इस लकीत का निकाह करवा दे, उसका निकाह करवाने की विलायत हासिल नहीं। इसलिए क्योंकि निकाह की विलायत या तो रिश्तेदारी की वजह से हासिल होती है, या मालिक को हासिल होती है कि वो जिसका निकाह करवा रहा है वो उसका ममलूक है, या बादशाह को हासिल होती है कि वो नाबालिग जो है उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो बादशाह को विलायत हासिल होती है। लेकिन यहां मुल्तकित के अंदर कोई एक सबब भी नहीं पाया जा रहा विलायत निकाह का, ना तो वो इस लकीत का करीबी रिश्तेदार है, ना वो इसका मालिक है, और ना वो बादशाह है, ना बादशाह और हाकिम है। भाई कहते हैं वला यजूजु तजवीजुल मुल्तकिती, और मुल्तकित का इस लकीत का निकाह करवाना जायज नहीं है। लिनइदामी सबबिल विलायती, इस वजह से कि विलायत का सबब मादूम है। यहां विलायत का सबब मादूम है, उसे विलायत हासिल नहीं है। बतला रहे हैं वो सबब विलायत क्या क्या हो सकता है। कहते हैं मीनल कराबती वल मिल की व सल्तनती, यानी रिश्तेदारी, वल मिल की और मिल्कियत, व सल्तनती और बादशाही यानी हुकूमत, या तो करीबी रिश्तेदार हो उसको भी विलायत होती है, उसका निकाह करवा सकता है नाबालिग का, या मालिक हो, मालिक को भी अपने ममलूक का निकाह करने की विलायत होती है, या वो हाकिम हो, हाकिम को भी निकाह की विलायत होती है। तो मुल्तकित में इनमें से कोई एक चीज भी नहीं पाई जा रही, ना वो करीबी रिश्तेदार है इस लकीत का, ना वो इसका मालिक है, और ना वो इस पर हाकिम है। भाई तो कहते हैं लिनइदामी सबबिल विलायती, विलायत का सबब मादूम होने की वजह से। मिनल कराबती वल मिल्क व सल्तनती, यानी रिश्तेदारी और मिल्कियत और हकूमत। قال صاحب قدوري फरमाते हैं वला तसर्रुफुहु फी मालिल मुल्तकती, इसका अतफ भी तजवीज पर है, पीछे आया था। वला यजूजु तजवीजुल मुल्तकिती, वला यजूजु तसर्रुफुहु फी मालिल मुल्तकिती। भाई बच्चे को पाने वाला वो है मुल्तकित, और बच्चा है लकीत, और इसी तरह मुल्तकत भी, भाई इसमें मफूल जिसको पाया गया है, जिसको उठाया गया है। तो यहां ये मुल्तकत लफ्ज है भाई, याद रखना। वला तसर्रुफुहु फी मालिल मुल्तकिती, और मुल्तकित के लिए मुल्तकत यानी वो जो लकीत है उसके माल में तसर्रुफ करना भी जायज नहीं है। तवज्जो है, तो ये वला तसर्रुफुहु इसका आतफ है, पीछे जो आया था तजवीजुल मुल्तकित ये उस पर आतफ है। वला तसर्रुफुहु फी मालिल मुल्तकती, और मुल्तकत के माल में उसका तसर्रुफ भी जायज नहीं है। एतबारम बिल उम्मी, मां पर कयास करते हुए। किस पर? मां पर। आप पढ़ चुके हैं के बाप को नाबालिग औलाद के माल में तसर्रुफ का हक होता है, लेकिन मां को नाबालिग औलाद के माल में तसर्रुफ का हक नहीं। वजह यह कि नाबालिग औलाद के माल में जो तसर्रुफ का हक दिया है शरीयत ने, वो माल को बढ़ाने के लिए है, नफे के लिए है, और उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक अकल कामिल होनी चाहिए और एक शफकत कामिल होनी चाहिए। बाप की अकल भी कामिल है और शफकत भी कामिल है, लिहाजा उसको सगीर के माल पर विलायत हासिल है। मां जो है, मां के अंदर शफकत तो कामिल है लेकिन अकल कामिल नहीं, क्योंकि औरतों को नाकिसातुल अकल कहा गया है हदीस के अंदर भाई, लिहाजा मां को नाबालिग के माल में तसरुफ का हक नहीं। इसी तरह ये जो मुल्तकित है, ये मर्द है, इसकी राय, इसकी अकल तो कामिल है लेकिन ये तो अजनबी है, यहां शफकत कामिल नहीं है, लिहाजा इसको भी सगीर के माल में तसरुफ की विलायत नहीं होगी भाई। यह माना है वला तसरुफ फी माल मुल्तकति, और मुल्तकित का तसरुफ भी जायज नहीं है उस लकीत के माल में, एतबार अम्बिल उम्मी, मां पर कयास करते हुए, वहादा और ये इस वजह से, लिअन्ना विलायत तसरुफ लि तस्मीर माल, इसलिए क्योंकि माल के अंदर तसरुफ की जो विलायत होती है, लि तस्मीर माल, तस्मीर भाई समर समीर तस्मीर सा के साथ, इसके माने हैं माल को बढ़ाना, लिअन्न विलायत तसरुफी, इसलिए क्योंकि माल के अंदर जो तसरुफ की विलायत होती है, लि तस्मीर माल, वो माल को बढ़ाने के लिए होती है, वذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة, और ये पाई जाती है कामिल राय यानी कामिल अकल के जरिए, والشفقة الوافرة और कसीर शफकत के जरिए। माल में तसरुफ की विलायत किस लिए दी गई है? माल को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए अकल का कामिल होना और शफकत का वाफिर होना जरूरी है, और यह तो इस मुल्तकित के अंदर नहीं पाई जाती। तो कहते हैं वذلك يتحقق, और यह विलायत पाई जाती है, بالرأي الكامل والشفقة الوافرة, कामिल अकल और वाफिर शफकत के जरिए, والموجود في كل واحد منهما احدهما, और इन दोनों में से हर एक के अंदर, तो इनमें से एक चीज पाई जा रही है, मां के अंदर शफकत तो कामिल है लेकिन अकल कामिल नहीं, और मुल्तकित के अंदर अकल तो कामिल है लेकिन शफकत कामिल नहीं। यह माना है वल मौजूद फी कुल वाहिद मिनहुमा अहदुहुमा, और इन दोनों के अंदर, इन दो चीजों में से एक चीज पाई जा रही है। قال صاحب قدوري فرماتے ہیں ويجوز ان يقبض له الهبة, हां मुल्तकित के लिए यह जायज है कि वो लकीत के लिए तोहफे पर कब्जा कर सकता है। कोई तोहफा भेजता है इस लकीत के लिए तो मुल्तकित को विलायत है कि वो उस तोहफे पर उस लकीत के लिए कब्जा कर सकता है। वजह यह कि इसके अंदर लकीत का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है, लिहाजा इसकी इजाजत है उसको। कहते हैं भैया जूज अयक बीजा लहुल हिबाता, और मुल्तकित के लिए जायज है कि वो उस लकीत के लिए हिबा पर कब्जा कर ले, लिअन नहू नफ उन महजुन, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ नफा है, व लिहादा यम लिकुह सगीर बिनफसी ही इदा काना आकिला, और इसीलिए सगीर खुद भी इसका मालिक होता है, इदा काना आकिला, जब वो अकल वाला हो यानी समझदार हो। इसमें चूंकि सिर्फ बच्चे का नफा है लिहाजा बच्चा खुद भी अपने हिबा पर कब्जा कर सकता है जब वो समझदार है। वह तमलिकुहुल उम्म वसी युहा, और नीज इसकी मालिक तो इसकी मां भी है और इसका वसी भी है। नाबालिग को कोई तोहफा दे, मां को अगरचे नाबालिग के माल पर विलायत हासिल नहीं लेकिन सगीर के लिए तोहफे पर मां भी कब्जा कर सकती है। इसी तरह वसी भाई, वसी वो शख्स है कि जिसे मरने वाला अपने माल का निगरान बना दे कि मेरी औलाद पर खर्च करना और उनमें विरासत सही तरह तकसीम कर देना, तो उसको वसी कहते हैं। तो वसी को भी यह विलायत हासिल होती है कि मैयत के नाबालिग औलाद के लिए कोई तोहफा भेजे तो वसी उसके लिए उस पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे का नफा ही नफा है, नुकसान नहीं। तो कहते हैं वतम लिकुहुल उम्म व वसीयुहा, और इसका मालिक तो मां और वसी भी होते हैं। قال ويسلمه في صناعه, قال صاحب قدوري फरमाते हैं ويسلمه, ये युस्लिमा का आतफ है, पीछे आया था अन यकबिजा, तो यकबिजा मंसूब है अन की वजह से, तो उसी पर युस्लिमा का आतफ है, ये भी मंसूब होगा। قال صاحب قدوري फरमाते हैं ويسلمه في صناعه, صناعت कहते हैं कारीगरी और पेशा, क्या यह मुल्तकित इस बच्चे को किसी कारीगरी या पेशे में दे सकता है आगे कि यह पेशा सीख ले, कारीगरी सीख ले? तो कहते हैं पेशे में दे सकता है। कहते हैं قال صاحب قدوري फरमाते हैं ويسلمه في صناعه, यह मुल्तकित जो है इस लकीत को कारीगरी के अंदर सुपुर्द कर सकता है, لانه من باب تثقيفه وحفظ حاله, تثقيف भाई सक्फ, यु सक्फ तस्कीफ का माना है मुहज्जब बनाना, मुहज्जब बनाना और इस्लाह करना। कहते हैं लिया नहुम मिम्बा भी तस्कीफी ही, इसलिए क्योंकि ये बच्चे को मुहज्जब बनाने के बाब से है, वहिफ जिहाल ही और उसकी हालत की हिफाजत के लिए है, लिहाजा इसकी इजाजत होगी उसको। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह यू आजीरा हूं कि जो मुल्तकित है ये इस लकीत को इजारे पर भी दे सकता है, यानी उजरत पर मजदूरी इसे करवा सकता है। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह यू आजीरा हूं और इस लकीत को वो उजरत पर भी दे सकता है। काल अल अब्दुल ज़ईफ, यहां से साहिब हिदायत जिक्र फरमा रहे हैं कि साहिब कुदूरी ने तो जिक्र फरमाया कि मुल्तकित इस बच्चे को उजरत पर दे सकता है, यानी इस पर उजरत से काम करवा सकता है, लेकिन जामे सगीर के अंदर है कि मुल्तकित जो है वो लकीत को उजरत पर नहीं दे सकता। तो कहते हैं काल अल अब्दु ज़ईफ, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है वहादा रिवायतुल कुदूरी ये फी मुख्तसरी ही, कि ये कुदूरी की रिवायत है उनकी मुख्तसर में, वफिल जामिअ सगीरी और जामे सगीर के अंदर है, ला यजूज़ अन युआजिरहू कि मुल्तकित के लिए जायज नहीं है कि उस लकीत को इजारे पर दे, ज़करहू फिल कराहियती, इसको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने किताबुल कराहियत के अंदर जिक्र किया है, वहुवल असह और यह कौल ज्यादा सहीह है। वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह वो जो इमाम कुदूरी ने कौल जिक्र किया कि इजारे पर दे सकता है, कहते हैं वजहुल अव्वली पहले कौल यानी इमाम कुदूरी के कौल की वजह यह है कि अन्नहु यरजिउ इला तस्कीफी ही, कि ये जो इजारे पर देना है ये लौटता है उसी बच्चे की तहजीब की तरफ, इससे बच्चा मुहज्जब बनेगा, तहजीब सीखेगा, कामकाज सीखेगा। वह वजहुस्सानी, और दूसरे कौल की वजह जो जामे सगीर में आया कि मुल्तकित लकीत को इजारे पर नहीं दे सकता, तो कहते हैं वज हुस्सानी और दूसरे कौल की वजह यह है कि अन्नहु ला यमलिकु इतलाफ मनाफी ही, कि ये मुल्तकित मालिक नहीं है कि बच्चे के मुनाफे को तलफ करे। भाई याद रखो, मां बच्चे से खिदमत ले सकती है लेकिन कोई अजनबी बच्चे से खिदमत ले ये उसके लिए जायज नहीं, या इसी तरह चचा बच्चे से खिदमत लेता है ये जायज नहीं। तो मालूम हुआ जब मां बच्चे से खुद खिदमत ले रही है तो मालूम वो बच्चे के मुनाफे को तलफ कर रही है, पैसे नहीं कमा रही, हालांकि इस काम के जरिए पैसे भी कमाए जा सकते थे कि वो किसी और की खिदमत के लिए इसको मुकर्रर कर देती। तो मालूम हुआ मां खुद खिदमत लेकर बच्चे के मुनाफे तलफ कर सकती है, मां इस चीज की मालिक है। तो मां जब बच्चे के मुनाफे तलफ करने की मालिक है बगैर इवज के, यानी अपनी खिदमत लेकर, तो मां उस बच्चे को इजारे पर भी दे सकती है। और मुल्तकित जैसे मुल्तकित जो है वो खुद इस बच्चे से खिदमत नहीं ले सकता, तो दूसरों को भी ये बच्चा इजारे पर नहीं दे सकता। ये इसी तरह है जैसे चचा, चचा जो है वो नाबालिग से खुद खिदमत नहीं ले सकता तो दूसरे को भी इजारे पर नहीं दे सकता। तो कहते हैं वज हुस्सानी और दूसरे कौल की वजह यह है कि अन्नहु ला यमलिकु इतलाफा मनाफी ही, कि ये मुल्तकित जो है ये बच्चे के मुनाफे तलफ करने का मालिक नहीं, तलफ करे यानी उसे खुद खिदमत ले ले ये इस बात का मालिक नहीं है। फअशबहल अम्मा, तो ये चचा के मुशाबे हो गया, तो लिहाजा जब यह खुद मुनाफे तलफ नहीं कर सकता तो दूसरों को भी इजारे पर नहीं दे सकता। बेखिलाफ इल उम्मी, बखिलाफ मां के, लिया नहा तम लिकुहू, क्योंकि वह इस बात की मालिक है, वह बच्चे के मुनाफे तलफ कर सकती है यानी खुद उससे खिदमत ले उससे। लिअन्नहा तमलिकुहू, क्योंकि मां इसकी मालिक है, अला मा नज़्कुरुहू फिल कराहियति इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जो हम किताबुल कराहियत में इंशा अल्लाह ताला जिक्र करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।